हमारे धन्य प्रभु के बारे में अधिक जानना है और यही हमारा यह एकत्र होने का उद्देश्य है, इसी उद्देश्य के लिए है। और अब और परमेश्वर के बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज सुबह हमारे पास एक वचन से एक अद्भुत आशीष थी। हम सभा के हर समय का एक भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इब्रानियों की पुस्तक में से शिक्षा को दे रहा हूं। अब पिछले कुछ हफ्तों से इसे लेते आ रहा हूं। अब यदि प्रभु की इच्छा हुई तो हम बुधवार की रात को जारी रखेंगे, फिर रविवार की सुबह को और रविवार की रात को आगे, क्योंकि जब तक मैं इस समय पर यहाँ रहता हूँ, न ही एक बेदारी लेकिन यह ये बेदारी है हमारी नियमित रातों में की एक सभा। और इसलिए हम इस समय आसपास के शहरों में के अपने अच्छे दोस्तों से मिलकर बहुत ही खुश हैं, और यहाँ आसपास के फॉल्स के शहरों में से दोस्तों से मिलकर। और यदि हमारा रद्द होता है या कुछ और होता है तो हो सकता है कि प्रभु बहुत जल्द हमारी अगुवाई करेगा। ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ रातें हो सकती हैं, शायद व्यायामशाला में या कहीं और हो सकती है कुछ समय बाद। यदि ऐसा दिखाई देता है कि प्रभु उस ओर अगुवाई करता है, उस स्थान की ओर जहां हम अपने लोगों को एक साथ एकत्र कर सकें, और हमने लोगों को देखा है जब वे वहां आते हैं वापस चले जाते हैं कहते हुए इसमें अंदर आने के लिए भी जगह नहीं थी। बेशक आराधनालय बहुत ही छोटा है, इसमें बहुत ही कम लोग बैठते हैं, और हम बस बहुत ही खुश हैं कि आप बाहर आकर और गर्मी में बैठकर प्रभु का वचन सुनने की इच्छा रखते हैं। और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको अत्यंत बहुताय से आशीष दे और आपकी सहायता करे। और अब आज रात हम चाहते हैं, हम आरंभ कर रहे हैं चौथे। आज सुबह यहाँ पर कितने लोग थे, आइए आपके हाथ देखते हैं। ओह, ये अद्भुत है, लगभग आप सभी थे। और हम इब्रानियों की किताब के चौथे अध्याय से शुरुआत कर रहे हैं। ओह, क्या ही शानदार किताब है, क्या आप इसका आनंद ले रहे हैं? और यह वचन से वचन की तुलना कर रहा है। और पौलुस, इससे पहले कि वह कभी अपने अनुभव की गवाही देता, उससे पहले वहां अरब जाकर और वचन के द्वारा पता लगाना था कि क्या यह सच्चाई थी या नहीं। मैं इसे पसंद करता हूं। और आज सुबह के विषय में हमने पाया, आज सुबह की शिक्षा में, कि मसीह कल आज और हमेशा एक सा है। और पौलुस ने पाया कि वही आग का खंभा जिसने इसराइलियों की अगुवाई की दशमिश के रास्ते पर उससे भेंट की थी। हमने पाया कि वो आग का खंभा जो इसराइलियों को जंगल में से अगुवाई की उस प्रतिज्ञा किए गए देश में दशमिश के रास्ते में पौलुस से मिला और खुद को यीशु कहकर बुलाया। तब हम यीशु मसीह की सच्ची सर्वोच्च दैविकता को देखते हैं। यहाँ संपूर्ण किताब बस यीशु मसीह का एक प्रकाशन है। और वो आया, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने विविध समयों और भिन्न भिन्न तरीकों से भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूर्व पिताओं से बातें की। इस अंतिम दिनों में अपने पुत्र यीशु मसीह के जरिए से उसने स्वयं को प्रकट किया है। और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की किताब प्रभु यीशु के एक निरंतर सनातन प्रकाशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हम पाते हैं कि वही वो एक था जो उस जलती हुई झाड़ी में था। हम देखते हैं कि वही वो एक था जो दुनिया की बुनियाद डालने से पहले परमेश्वर के साथ था। और हम इसे पाते हैं नए नियम में, वो परमेश्वर और मनुष्य एक साथ था। और फिर जब उसने नए नियम को छोड़ा स्वर्ग में जाने के लिए, तो उसने कहा मैं परमेश्वर से आया हूँ और परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। और बाद में जब पौलुस ने उससे भेंट की तो वो उसी रूप में था जब उसने इज़राइल का नेतृत्व किया था जो एक अग्नि का खंभा था। और पौलुस ने सीधे उसके मुख की ओर देखा अपरिवर्तित होकर, और इसी कारण से उसके शेष दिनों में उसकी आंखों में परेशानी रही थी। वो अंधा हो गया और कई दिनों तक वह कुछ भी नहीं देख सका। उसे सीधी नामक गली में अगुवाई करके ले जाना था, और वहाँ परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता था जिससे उसने बात की, उसका नाम हनन्याह था, जो अंदर आया एक दर्शन के द्वारा, और उसने पौलुस पर हाथ रखकर और कहा भाई शाऊल अपनी दृष्टि को ले लो। और उसके बाद हम पाते हैं कि वही पवित्र आत्मा, वही प्रभु यीशु प्रकाश के रूप में पतरस के पास आया और उसे जेल में से बाहर निकाला। और हम पाते हैं कि वही प्रभु यीशु इन दिनों में अभी भी उस आग के खंभे प्रकाश में है, जो अपने लोगों की उसकी कलीसिया का नेतृत्व कर रहा है, उसी कार्य को करते हुए दर्शनों को देते हुए अंदर आकर और एक दर्शन के द्वारा लोगों पर हाथ रखता है। प्रभु यीशु जिसने पिछले रविवार की सुबह घर पर भेंट की और कहा कि एक व्यक्ति आ रहा है जिसका सिर काला है, पके बाल हैं, वो एक यूनानी है, उसकी पत्नी मध्य आयु की है और वेदी पर रो रही होगी। उनमें से कुछ ने उसे बताया था और जानते थे कि यह हो रहा था। उसे दोनों ही था, वो अपंग था और उसके सिर में की वो संतुलन करने वाली नस जा चुकी थी। वो यहाँ तक अपने पैरों या अपने अंगों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता था और वह अंधा था। और इसे दोहरा प्रमाण बनाने के लिए मेरे पास बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए पहले एक छोटी महिला थी, फिर पीछे की ओर मुड़कर और भाई थॉम को प्रार्थना करने के लिए आना था और हम यहाँ बैठे हुए इसे विकसित होते हुए देख रहे थे। और फिर मैं वहाँ नीचे गया और बीमारों के लिए प्रार्थना की और वापस चलकर गया और वो बिल्कुल ठीक दर्शन के अनुसार आई और मेरे हाथ को पकड़कर और रोने लगती है और कहा, डॉक्टर एकरमैन ने उन्हें यहाँ भेजा था। डॉक्टर एकरमैन मेरे गहरे मित्र हैं जो कैथोलिक हैं। उनका लड़का ईसाई मठ में एक याजक है सेंट मिनरॉड में और वहाँ नीचे इंडियाना में है और यह मनुष्य जैस्पर से था और प्रभु ने उसे उस कुर्सी पर से चंगा किया। वह उठा और चलने लगा। वह किसी भी और की तरह अच्छी तरह देख सकता था और सामान्य और चंगा होकर इमारत से बाहर चला गया, सब एक दर्शन के द्वारा। भाई शाउल, प्रभु यीशु जो मार्ग में तुझ पर प्रकट हुआ उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुझ पर हाथ को रख सकूं, जिससे कि तुम अपनी दृष्टि को पा सको और पवित्र आत्मा से भर जाओ। अद्भुत। तब हम पाते हैं यह देखते हुए कि हमारे पास यह महान उद्धार है, हमें नहीं चाहिए, हम परमेश्वर के दंड और क्रोध से बचकर नहीं निकल सकते यदि हम इतने महान उद्धार को अनदेखा करते हैं। अब हम आज रात को पढ़ना आरंभ करने जा रहे हैं और इब्रानियों की किताब से चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। यदि कोई हमारे साथ पढ़ना चाहता है तो हमारे पास यहाँ कुछ बाइबल है, यदि वे एक बाइबल को चाहते हैं, इसलिए संचालक करने वालों में से कोई एक इसे आपके पास लेकर आएगा। क्या आप अपने हाथ में इन बाइबलों को उठाएंगे? यदि यहाँ के भाइयों में से एक इसे लेकर वहाँ पर, मैं सोचता हूँ दो बाइबलें रखी हुई हैं। और अब हम जल्दी करेंगे क्योंकि थोड़ी देर बाद हम प्रभु भोज को लेंगे और जहाँ पर हम आज रात समाप्त करेंगे वहाँ से बुधवार की रात हम फिर से आरंभ करेंगे। अब मुझे विश्वास है आज सुबह हमारी शिक्षा में हमने 15वें पद पर शुरुआत की। कोई तो हो सकता है मुझे नहीं जानता कि मैं पढ़ते वक्त चश्मा लगाता हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मैं अब भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं इसे जल्दी से नहीं पढ़ सकता हूँ, विशेषकर जब मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, जब बढ़िया छपाई होती है। और मैं अपनी आँखों की जांच करवाने गया यह देखने के लिए कि कहीं मेरी दृष्टि घटती तो नहीं जा रही है, मेरी आँखें 10-10 थी। उसने कहा, लेकिन तुम 40 के पार हो गए हो पुत्र। उसने मुझे पढ़ने के लिए एक चीज दी थी, उसने कहा इसे पढ़ना शुरू करो। मैंने इसे पढ़ा और मैं नजदीक आता रहा, यह धीमा और धीमा होता गया और यह इस तरह से हो गया, मैं रुक गया। फिर उसने वहाँ 10-10 लिख दिया। मैं उसे कहीं से भी पढ़ सकता था, लेकिन उसने बताया ये क्या है, जब आप 40 के पार हो जाते हैं तो आपकी आँखों की पुतलियाँ फीकी पड़ जाती हैं। अब मैं अपनी आँखें सिकुड़ सकता हूँ और बस मेरे इतने नजदीक से पढ़ सकता हूँ, लेकिन आपको सिकुड़ना होगा। तो उसने मेरे लिए बस एक जोड़ी चश्मा बनाया, मैं इसे कहीं से भी देख सकता हूँ जब यह मेरे काफी नजदीक होता है। अब जब इसे मुझ पर से उतारता हूँ तो इन चीजों के साथ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, लेकिन मैंने उन्हें पढ़ा, इस चश्मे को लगाकर पढ़ा। अब आज सुबह हमारे पास इब्रानियों के तीसरे अध्याय का अंतिम भाग था और ओह, हम क्या ही भरपूर मूल दाने को देखते हैं। अब सुनना, मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ जिससे कि हमें अब एक बुनियाद मिले। इस पर बात नहीं करेंगे लेकिन इस पर थोड़ा सा जाएंगे। जबकि कहा जाता है कि आज के दिन यदि तुम उसकी आवाज सुनो, अपने हृदय को कठोर न करो जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने, उन्होंने वचन सुना, जब उन्होंने वचन को सुना था तो क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से बाहर निकले थे? अब उसमें आज सुबह हम ये देखते हैं कि उसने कहा अब अपने हृदय को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के दिनों में किया था। यही है जब उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया क्योंकि उसने अपने भविष्यवक्ता मूसा को उनके लिए दिया था और एक चिन्ह जो मूसा के साथ था। आज रात कक्षा में कितने लोग जानते हैं कि वो चिन्ह क्या था? अग्नि का खंभा, इब्रानियों 13। अब हम नहीं जानते कि सभा के लोगों ने उस चिन्ह को देखा या नहीं, लेकिन मूसा ने इसे देखा क्योंकि मूसा ने पहले उससे जलती हुई झाड़ी में भेंट की। वो एक आग थी और इसराइल की संतान ने मूसा की आज्ञा मानी और मिस्र देश से निकल गए। और जैसे ही वे मिस्र से बाहर निकले हम देखते हैं परमेश्वर सीधे उन्हें उस जाल की ओर लेकर गया जहां उनके पीछे फिरौन की सेना थी और आगे की ओर लाल समुन्दर था। और परमेश्वर ने उन्हें परीक्षा में डाला और वे डर गए और इसने परमेश्वर को क्रोध दिलाया। उसने कहा तुम मेरी क्यों दुहाई देते हो? कहा बस बोलो और आगे बढ़ो, मैं इसे पसंद करता हूँ। अब वे मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे जैसे मूसा उस खंभे और बादल के पीछे पीछे चला और वे प्रतिज्ञा किए गए देश के रास्ते पर थे। आज रात ये कलीसिया की सुंदर तस्वीर उसी आत्मा के नेतृत्व में प्रतिज्ञा किए गए देश के रास्ते में वही चिन्ह और अद्भुत कार्य जैसे परमेश्वर ने बोले थे। अब ध्यान दें, तब वे पाप के जंगल में आए, वो पानी जो कड़वा था मारा। परमेश्वर उन्हें कड़वे जल की ओर क्यों ले आया? ऐसा दिखाई देता था कि वो उन्हें अच्छे जल की ओर लेकर गया होगा, लेकिन वो उन्हें कड़वे जल की ओर लेकर गया जिससे कि वो उनके विश्वास को साबित कर सके। वो ऐसा करना पसंद करता है, वो आप पर आपत्तियों को आने देना पसंद करता है। यह दिखाता है कि वो आपको अपने प्रेम और अपनी सामर्थ को दिखा सकता है। किस तरह से भला आज लोग कर सकते हैं जो परमेश्वर के अद्भुत कार्य में विश्वास नहीं करते? जब आपत्तियां आती है तो वे हार मान लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करता है। वह नहीं, परमेश्वर के इस बात को सुनना, यदि विश्वास उसी कार्य को नहीं करता है जब वही परिस्थितियां ऊपर आने लगती है, तब परमेश्वर उसके लोगों के प्रति पक्षपाती होने का दोषी ठहरता है। परमेश्वर की प्रभुत्वा उससे हर मामले में काम करने की मांग करती है जैसे उसने पहले मामले में किया था, या तो वो गलत था जब उसने पहले मामले में किया। यदि परमेश्वर उसी तरह से कार्य नहीं करता जैसा उसने पहले मामले में किया था, यदि वह दूसरे मामले से भिन्न कार्य को करता है, तो जब उसने पहले मामले पर कार्य किया तब उसने गलत काम को किया था। यदि परमेश्वर ने पुराने नियम में बीमारों को चंगा किया तो उसे इसे नए नियम में करना होगा, और आज भी या तो जब उसने उन्हें वहाँ पहले चंगा किया तब उसने गलत किया, उसे हर समय उसी तरह की प्रतिक्रिया करना होता है। और वो इसे करेगा जब वही विश्वास शर्त को पूरा करता है। दोष हम में है, परमेश्वर में नहीं, क्योंकि हम उसे थोड़े पर ही देखते हैं और बहुत से महान उत्कृष्ट चमत्कार को हम इसे जानते हैं। निंदक नहीं कह सकते ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे हम देखते हैं, ये इसे साबित करता है और वहाँ पर ये है। वे हमेशा कहते हैं मुझे एक अद्भुत कार्य दिखाओ, वे अब इसे और नहीं कह सकते। विज्ञान ऐसा अब और नहीं कह सकता, हम विज्ञान की दुनिया को पूरी तरह से साबित कर सकते हैं। और वैज्ञानिक दुनिया ने इस बात को देखा है कि एक अलौकिक सत्व एक अग्नि के स्तंभ के रूप में हमारे साथ है। यहाँ पर उसकी तस्वीर है ठीक यहाँ, और एक तस्वीर आज रात वाशिंगटन डीसी में लटकी हुई है, ये वही मसीह है। इसलिए कुछ समय के लिए मेरे सेवक भाई मुझसे अक्सर कहते रहते थे, ओह भाई ब्रैनम यह शैतान है, आप इसके साथ मूर्ख मत बनो। मुझे डरा दिया था और मैं उसका प्रचार तब तक नहीं करूंगा जब तक कि परमेश्वर आकर और इसे प्रकट नहीं करता कि यह वही यीशु है, वही वो एक है। और फिर इसे मुझमें से निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वचन है, यह परमेश्वर का वचन है। यह बस ऐसा ही एक अनुभव नहीं है जो गलत है, यह एक ऐसा अनुभव है जो परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की अनंत धन्य प्रतिज्ञा के द्वारा समर्थन किया गया है। अब हम यहाँ पर तब ध्यान देते हैं कि उसने कहा, क्योंकि कुछ लोगों ने जब उन्होंने सुना तो उन्होंने क्रोध दिलाया, निश्चय ही वे थक जाते। हर समय वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते जहां एक बल परीक्षा आ जाती, फिर वे क्या करते, वे ढीले पड़ जाते और थक जाते और वापस पीछे मुड़ना चाहते और कहते, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अजीब बात है, आज सुबह इस प्रचार को करने के बाद बस जितना परिश्रम से मैं कर सकता था मैंने किया। बहुत से लोग वेदी के पास आए थे और इस सवाल को पूछा, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। आपने देखा कि यह किस तरह से जाता है, यह लोगों के सिर के ऊपर से जाता है। यह वही लोग हैं। यीशु ने कहा, तुम्हारे पास आंखें हैं लेकिन तुम देख नहीं सकते। उसने ऐसा चेलों से कहा। उन्होंने कहा, लो अब तुम साफ साफ बात करते हो, अब हम विश्वास करते हैं। किसी मनुष्य को आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर इसे आपको दिखाता है। उसने कहा, इतने समय के बाद क्या अब तुम विश्वास करते हो। देखा, आपके लिए अवश्य है कि परमेश्वर से कुछ भी सवाल ना करें, क्योंकि धर्मी जन के पद चिन्ह यहोवा की ओर से दृढ़ होते हैं और हर एक परीक्षा आप पर डाली जाती है ताकि आपको साबित करे। और बाइबल ने कहा, वे आपके लिए सोने से ज्यादा बहुमूल्य है। तो यदि परमेश्वर आपके लिए कुछ हल्के कष्ट होने देता है, याद रखें यह आपके सुधार के लिए होता है। हर एक पुत्र जो परमेश्वर के पास आता है उसकी अवश्य ही पहले परमेश्वर के द्वारा ताड़ना होनी है और उसकी परीक्षा होनी है। बाल प्रशिक्षित, कोई आपत्ति नहीं है। हर एक पुत्र जो आता है और ये दुख दिए जाते हैं वे लाए गए हैं यह देखने के लिए कि आपका रवैया क्या होगा। देखा, यह परमेश्वर है इस साबित करने वाली जमीन पर, यही वो सारी धरती है जो प्रमाणित करने वाली भूमि है और जहां वह आपको साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब सुनना, जैसे हम आगे बढ़ते हैं और मैं इसके अंतिम भाग को लेना चाहता हूं। उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। अब यही है जहां हम आज रात आ रहे हैं, उसके विश्राम में, परंतु उनके लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया। तो हम देखते हैं कि वे प्रवेश नहीं कर सके अविश्वास के कारण। अब पाप क्या है? अविश्वास। परमेश्वर उनके पास अग्नि के खंभे में आया था और उसके भविष्यवक्ता को भेजा और उसका अभिषेक किया और उसे लोगों के सामने करने के लिए चिन्हों को दिया, और तब अग्नि का खंभा भविष्यवक्ता के द्वारा उन्हें बाहर निकाला। हर एक परिस्थिति में वे आते हैं, वे कुरकुराना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हर एक छोटी गलती वे मूसा के साथ पाते हैं, उसके विरोध में फटकार करते और झिड़कने लगते हैं। और परमेश्वर अप्रसन्न हुआ था क्योंकि उसने कहा कि वे पाप कर रहे हैं। उन्हें सुनना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके उन्होंने तर्क को सुना। ऐसा भला कैसे हो सकता है, ये बातें भला कैसे हो सकती है। यदि वो परमेश्वर है तो सब कुछ संभव है और उनके लिए ये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी जो उससे प्रेम रखते हैं। अब हम यहाँ एक महान अध्ययन पर जा रहे हैं जो कि विश्राम पर है, वो सबत। अब वे उनकी यात्रा में परदेशी थे। देखा, वे वहाँ मिस्र में रहे 400 वर्ष तक और बंधुआई में रहे, और अब वे परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के द्वारा उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार निकाले गए थे और वे उनके मार्ग पर प्रतिज्ञा देश की ओर जा रहे थे। और यहाँ उनके बीच में एक अलौकिक प्रकाश प्रकट होता है और उनका नेतृत्व करने लगता है। अब कोई तो कहता है, अब यहाँ देखो, यह मूसा है कौन? किसने तुम्हें हम पर अधिकारी बनाया? क्या तुम हम में से एक नहीं हो? तुम्हें हमारा अधिकारी बनने के लिए किसने यहाँ पर रखा? तुम सोचते हो कि तुम हमारे पास्टर से ज्यादा जानते हो? तुम सोचते हो कि तुम याजक से ज्यादा जानते हो? तुम सोचते हो कि तुम इस दिन के हमारे धार्मिक पुरुषों की तुलना से अधिक चतुर हो? इसका इससे कोई लेना देना नहीं था। यह अग्नि के खंभे में परमेश्वर था जो इस बात को प्रमाणित कर रहा था कि वो उस गतिविधि में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन चतुर था और कौन चतुर नहीं था। ये तो उसके पीछे का विचार था जो परमेश्वर ने उनके सामने रखा। क्योंकि मूसा ने जब तक शारीरिक रूप से मूर्खता के काम को किया, जब उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा संतानों को छुड़ाने की कोशिश की, लोगों के झुंड को वहाँ जंगल में लेकर जाते हुए, जब उसने उसके, क्योंकि उनके पास जो कुछ भी था वो उसका वारिस था, उसके पास वहाँ पूरी दुनिया में की हर एक सेना थी आदेश के साथ, और वहाँ वो था एक महान सैन्य प्रधान था, और उसका अगला कदम उसे मिस्र का फिरौन राजा बनना था। इसलिए वो बस सिंहासन पर चढ़ सकता था और कह सकता था, तो ठीक है बच्चों, वापस अपने घर चले जाओ, इससे बात खत्म हो जाती। वो एक फिरौन था, लेकिन मूसा, ओह यहाँ है ये। मूसा ने विश्वास के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखा, और प्रभु का दूत उसके पास आया, और वो उस दूत की उपस्थिति में 5 मिनट में ही परमेश्वर के बारे में उसे और अधिक जान गया, जो उसने मिस्र के शिक्षकों से 40 वर्षों में सीखा था। वो जानता था कि वो था, उसने अलौकिक को देख लिया था। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मूसा, मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा, और वे समझ गए, और वो उसे प्रदर्शन करने के लिए चिन्हों को देता है। अब वे विश्राम के देश की ओर अपने मार्ग पर थे। परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया था, एक ऐसी जगह जहां उन्हें उन पर सख्ती से काम करवाने वाले नहीं होंगे, कि उन्हें परिश्रम करवाएं, कि उन्हें काम करने को लगाएं। आज की ये कितनी सुंदर तस्वीर है, जब हम कलीसिया की ओर देखते हैं और कलीसिया को उसकी परिस्थिति में देखते हैं। हर एक मनुष्य जो परमेश्वर के आत्मा से जन्मा है, संसार से घृणा करता है, और यदि तुम संसार से या संसार की चीजों से प्रेम रखते हो, तो परमेश्वर का प्रेम तुम में है ही नहीं। यही है जो बाइबल ने कहा, और सच्चे यात्री अपने मार्ग पर बस संसार की चीजों से घृणा करते हैं। वो मनुष्य को शराब पीते देखकर घृणा करता है, वो मनुष्य को धूम्रपान करते हुए देखकर घृणा करता है, वो ऐसी महिलाओं को सड़क पर देखकर घृणा करता है जो उनके छोटे पुराने गंदे कपड़े पहने हुए होती हैं, वो पासा फेंकने और ताश के पत्तों की पार्टियों को देखकर घृणा करता है। और कल जबकि भाई टोनी, मतलब भाई वुड और मैं सड़क से आ रहे थे, और कुछ पुरुष वहाँ लुइसविले में एक छोटी महिला थी जो सड़क पर से आ रही थी, सुंदर दिखने वाली छोटी महिला जिसने ऐसे कपड़े पहने थे जो बहुत ही खराब थे, बस कुल्हे पर थोड़ा सा ऊपर की ओर और उसके कुल्हों पर दोनों तरफ बंधी एक छोटी सी रिबन, और उसके सामने एक छोटा सा गोल कपड़े का टुकड़ा, और पीछे एक डोरी से बंधा हुआ, सड़क पर चलते हुए बहुत ही भयानक, और सड़क पर हर एक व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। मैंने कहा, वो नहीं जानती कि वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी है, और हर उस पुरुष के साथ वे विचार कर रही है जिसने उसकी ओर उस ढंग से दृष्टि की, और उस स्त्री को न्याय के दिन पर उन पुरुषों के साथ वे विचार करने के लिए उत्तर देना होगा। यीशु ने कहा, जो कोई किसी स्त्री को उसकी ओर अभिलाषा से देखता है, वो उसके साथ पहले ही वे विचार कर बैठा है। यह सही बात है। सो आप देखना, भाई वुड ने मुझसे कहा, इसके लिए आप क्या मानते हैं भाई ब्रैनम? मैंने कहा, यह या तो मानसिक कमी है या तो शैतान का अधिकार। इसे ऐसा बनाने के लिए केवल दो ही बातें हैं, एक सभ्य साफ सुथरी स्त्री ऐसी चीजों को तब तक नहीं पहनेगी जब तक कि वो शैतान से त्रस्त न हो। यह बिल्कुल सच बात है। अब एक यात्री जो उसके स्वर्ग के मार्ग पर है, वो एक अलग ही वातावरण में रहता है। आपको उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी ओर देख रहा है, वो अपने सिर को घुमा देगा यदि उसके हृदय में परमेश्वर है, क्योंकि वो ऐसे वातावरण में रह रहा है जो उन चीजों से 1,00,000 मील दूर है। सही बात है, आप न्याय के समय उस चीजों के लिए दोषी नहीं होना चाहते, तो वो सिर को घुमाकर और कहता है, परमेश्वर महिला पर दया कीजिए, और वो आगे चला जाता है। हम हमारी यात्रा में हैं, हम हमारे कनान देश की ओर जा रहे हैं, हम उस अनंत और धन्य विश्राम के मार्ग में हैं जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, और यात्रा में हमारी परीक्षा हुई है। हम सभी प्रकार की चीजों के लिए परीक्षा में पड़ते हैं, लेकिन फिर भी पाप किए बिना परीक्षा में पड़े। अब ध्यान दें, जैसे हम 4 अध्याय में जाते हैं, इसलिए हम डरे, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें कि जब तक हम पता नहीं लगा लेते, जब तक कि परमेश्वर इसे हम पर प्रकट नहीं करता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितना भी कलीसिया में जाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर अवश्य ही प्रकाशन के द्वारा आना है और अपने आप को हम पर प्रकट करना है, जो दुनिया की सभी चीजों को बाहर निकाल देता है। अब जबकि यह कहा गया है, आज यदि तुम, अब आइए उस चौथे अध्याय को शुरू करते हैं। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। अब याद रखें, जब वे विश्राम के मार्ग पर थे तो अग्नि का खंभा उनकी अगुवाई कर रहा था। अब हम जानना चाहते हैं यह विश्राम क्या है। अब आओ, जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। देखो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। अब यहाँ वो प्रतिज्ञा है, यहाँ हमें डरने की आवश्यकता है। यदि वहाँ हमारे लिए अब तक कोई प्रतिज्ञा है, लेकिन एक प्रतिज्ञा है, और फिर अगली चीज, कोई जन उससे रहित न जान पड़े। अब विचार यह है कि यदि हम विश्राम के मार्ग पर हैं, तो विश्राम क्या है, ये कहाँ है? क्या यह कलीसिया से जुड़ना है? क्या यह किसी एक तरह से बपतिस्मा लिया जाना है? क्या यह शहर के सबसे बड़े कलीसिया का सदस्य बनना है? क्या बेहतर कपड़े पहनना है? क्या पढ़ाई लिखाई करना है? क्या यह पैसा है? तो क्या हम काम को छोड़ सकते हैं और बस ऐसे ही पड़े रहें, हमारे बचे हुए जीवन में विश्राम करें, जैसा कि हम इसे कहते हैं? यह ऐसा नहीं है। सुनना, बाइबल क्या कहती है कि ये क्या है और हम इसे कैसे प्राप्त करें? जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे रहित जान पड़े। क्योंकि हमें तब उस दिन उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया था। सुसमाचार क्या है? अच्छी खबर। मिस्र में उनके लिए अच्छी खबर आई कि परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाले को भेजा है और वो हमें बाहर निकालेगा और हमें प्रतिज्ञा किए गए देश में लेकर जाएगा। अब हमारे लिए अच्छी खबर है कि परमेश्वर ने एक छुड़ाने वाला भेजा है, वो पवित्र आत्मा, और हम प्रतिज्ञा किए हुए देश के मार्ग पर हैं। अब लोगों ने इसे संस्था और संप्रदाय बना लिया है, लेकिन परमेश्वर अभी भी बना रहता है। हमारा विश्राम पवित्र आत्मा है। ध्यान दें, सुसमाचार प्रचार हुआ था, उन्हीं की नाई हमें सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। उस याद रखना, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि ये सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ओह मेरे भाइयों, मुझे यहाँ एक मिनट के लिए रुकने दो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वचन का कितना प्रचार किया गया है, आपने कितना अच्छी तरह से इसे पसंद किया है, जिस तरह से इसका प्रचार किया गया है। जब तक कि आप स्वयं उसके भागीदार नहीं होते, इससे आपका थोड़ा भी लाभ नहीं होगा। उनके द्वारा विश्वास के साथ मिश्रित नहीं किया जा रहा है जिन्होंने इसे सुना है। उन्होंने मूसा के अद्भुत कामों को देखा, उन्होंने कहा यह बहुत अच्छा है, और वे चल पड़े। उन्होंने उसे अद्भुत कार्यों को करते देखा, और उन्होंने अग्नि के खंभे को देखा, हो सकता है, या उन्हें इसके बारे में बात करते सुना। ओह ये ठीक है, लेकिन यह व्यक्तिगत विश्वास के साथ सही नहीं बैठा, क्योंकि जैसे ही वे जंगल में पहुँचे, वे हर एक कुड़कुड़ाने लगते हैं, और परमेश्वर ने कहा क्योंकि उन्होंने संदेह किया, यह पाप था। कुछ भी संदेह ना करें, विश्वास करें, संदेह ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, इसे विश्वास करें। अब उन्होंने कुड़कुड़ाना आरंभ किया, और परमेश्वर ने उनके विरुद्ध निर्णय लिया, और फिर उसने उसके क्रोध में शपथ खाई कि वे कभी भी उसके विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और बाइबल ने यहाँ कहा, मैं सोचता हूँ यह उस तीसरे अध्याय में है, कि उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं। तीसरा अध्याय और 17वां पद, लेकिन वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? और वे सारे जो मिस्र से बाहर निकले, उनमें से केवल दो ही प्रतिज्ञा किए हुए देश के अंदर गए। सारे विनाश पूर्व दुनिया में से बीते दिनों में अरबों लोगों में से 8 प्राण बचाए गए थे, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकड़ा है वो मार्ग और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। कुछ लोग कहते हैं, फिर भाई ब्रैनम इन सभी हजारों के बारे में क्या जो बाइबल ने कहा कि वे वहाँ उपस्थित होंगे? बस याद रखें कि हर एक पीढ़ी में कितने लोग मरे हैं जो कि हर युग में से होते हुए मसीह रहे हैं, वे सभी जी उठेंगे जिससे वो देह बनती है। आप उम्मीद करते हैं कि इस अमेरिका में 100 अरब होंगे बाहर आएंगे या कुछ और आज इस दुनिया में? हो सकता है कि 50 भी बाहर ना आए, लेकिन वो महान छुड़ाई हुई कलीसिया वहाँ मिट्टी में पड़ी हुई है, प्रतीक्षा कर रही है। वे परमेश्वर के रत्न हैं जो मिट्टी में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्राण परमेश्वर की वेदी के नीचे हैं। वे अपनी सही स्थिति में नहीं हैं, वे एक शरीर में हैं वास्तव में, लेकिन एक दैविक शरीर में, और वे परमेश्वर को पुकारते हैं। और कब तक? वे एक दूसरे को देख तो सकते हैं, लेकिन वे एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते। ये उस तरह का शरीर है। आज रात आप अपनी माँ से महिमा में मिलेंगे। यदि आप जाएंगे तो आप उसका हाथ नहीं मिला सकते, क्योंकि उसके पास उस तरह का हाथ नहीं है। आप उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जैसे आप अभी महसूस करते हैं, क्योंकि इस देह में 5 इंद्रियों को डाला गया है जो इसे नियंत्रित कर सकता है। उसकी उपस्थिति को एक अलग वातावरण में महसूस किया जाएगा। यह एक पति और पत्नी के जैसे ही है। वहाँ कोई विवाह नहीं होगा या स्वर्ग में विवाह में नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक भिन्न प्रकार का प्रेम होता है। वहाँ कोई यौन इच्छा नहीं होती है। वे सारी चीजें जा चुकी है। आप शुद्ध और पवित्र हुए हैं, लेकिन आप उस अवस्था में कभी नहीं रहे हैं, इसलिए आप उस अवस्था के लिए नहीं बने थे। आप बस वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप वापस आने की लालसा कर रहे हैं जहाँ आपको एक पुरुष और एक महिला बनाया गया था। और वहाँ परमेश्वर उस देह को धरती की मिट्टी में से उठाकर और इसे महिमा बंद करेगा। तब आप देखेंगे, चखेंगे, महसूस करेंगे, सुनेंगे और सुनेंगे और मिलेंगे जुलेंगे। हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम एक दूत के जीवन का आनंद कभी भी नहीं ले सकते। हम दूत नहीं बनाए गए थे। परमेश्वर ने दूतों को बनाया, लेकिन उसने आपको और मुझे पुरुष और स्त्री बनाया। यही वह अवस्था है जिसमें हम हमेशा के लिए होंगे उसके धन्य आगमन पर। अब देखो वे कैसे कम पाए गए, क्योंकि उन्होंने पाप किया और महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर ने उन्हें अग्नि का स्तंभ दिखाया, उसने उन्हें चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए, उसने उन्हें बाहर निकाला, वो उन्हें परीक्षा में लेकर आया ताकि उन्हें परखे और साबित करे। अब क्या आपके पास बहुत सारी परीक्षाएं नहीं थी? उनके बारे में शिकायत ना करें, आनंद करो। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके विश्वास को साबित करने की कोशिश कर रहा है। पुराने नियम में अय्यूब की ओर देखो, जब उसने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के बारे में विचार किया है, जो एक धर्मी पुरुष सिद्ध पुरुष है, उसके समान धरती पर कोई नहीं है। ओह, उसने कहा, यकीनन आपने उसके चारों ओर बाड़ा डाला हुआ है, उसके पास कोई तकलीफें नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उसके पास कोई धन संबंधित बोझ नहीं है, हर एक चीज ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मुझे उसे लेने दो, मैं उसे तेरे मुंह पर तुझे शाप दिलाने को लगाऊंगा। उसने कहा, वह तेरे हाथ में है, लेकिन तू उसके जीवन को नहीं लेना। ओह, उसने उसके साथ सब कुछ किया सिवाय उसके जीवन लेने के, लेकिन वो अय्यूब को हिला नहीं सका। अय्यूब जानता था कि वो वचन पर अपने निर्णय पर कायम है। ये सही बात है। और अधोलोक में के सारे शैतान उसे नहीं हिला सके, क्योंकि वो जानता था कि उसने उस बलिदान को चढ़ाया था, वो धर्मी था, और उन्होंने उस पर दोष लगाया, कहा, तूने पाप किया है अय्यूब, और परमेश्वर तुझे दंड दे रहा है। वो जानता था कि परमेश्वर ने नहीं, कि उसने परमेश्वर के सामने पाप नहीं किया था। वो जानता था कि वो धर्मी था, न ही इसलिए कि वो एक अच्छा मनुष्य था, लेकिन इसलिए कि वो उसके स्थान पर होम बलि स्वीकार कर रहा था। और आज रात हम जानते हैं कि उसके जीवन ने साबित किया कि वो धर्मी था। और जब आप महिमा में घर जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप अपने पड़ोसी की मदद करने की कोशिश करते हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए नहीं कि आप कलीसिया से जुड़ते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आप महिमा में घर जाते हैं क्योंकि आप यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, न ही आपने कुछ भी स्वयं किया है। अब जैसा कि हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सुसमाचार प्रचार किया गया है, दूसरा पद, उन्हीं की नाई पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि ये सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। विश्वास उनमें नहीं था जिन्होंने वचन को सुना। जरा सोचें, आज उस छोटी सी नम्र सेवकाई में जो प्रभु ने मुझे दी है, आज रात 4 करोड़ अमेरिका के लोग बच जाने चाहिए। आप जानते हैं कि वे क्या कहते हैं? क्यों? यह मानसिक मनों को पढ़ना है। वो एक मन की बातों को पढ़ने वाला है, ऐसी कोई चीज नहीं, क्योंकि वो हमारे कलीसिया से संबंध नहीं रखता है। देखा, यह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे वचन पर कितना रखते हैं और साबित करते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। यह तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। विज्ञान कितना भी साबित करे कि यह सत्य है, वे फिर भी विश्वास नहीं कर सकते। बाइबल ने कहा कि वे नहीं कर सकते। कहा, फिर इसका प्रचार करने का क्या फायदा? परमेश्वर के पास उस दिन पर उनको दोषी ठहराने के लिए एक गवाह होना चाहिए। उनके बीच वचन को प्रचार किया गया था और साबित किया गया, और उन्होंने फिर भी अनदेखा किया और चले गए। वहाँ न्याय के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। परमेश्वर राष्ट्र का निष्पक्ष रूप से न्याय नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास न्याय करने से पहले उस पर दया न की गई हो। वो परमेश्वर है, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब हम क्या कहते हैं? क्योंकि हम भी जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश किया है कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं पर तो यो कहा है, अब मैं लोगों की भावनाओं को उनके धर्म के विरुद्ध ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है। बाहर प्रचार के कार्य क्षेत्र में मैं केवल नियमित बड़े सुसमाचारक के मूल सिद्धांतों का ही प्रचार करता हूं। लेकिन यहां आराधनालय में मेरे बच्चों के बीच मैं महसूस करता हूं कि मुझे प्रचार करने का अधिकार है, जो मैं सोचता हूं कि ये मूल सिद्धांत है और सत्य है। देखा, जो मुझे लगता है कि ये सही है। अब मेरे सबत को मानने वाले हजारों अच्छे मित्र हैं, वे लोग जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, मेरे कुछ सबसे प्रिय मित्र हैं, उनमें से कुछ सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं। हालांकि बड़ी गतिविधि जिसे वो भविष्यवाणी की आवाज कहते हैं, वे पूरी तरह से मेरे विरुद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पुलपिट में से बयान को दिया है और कहा है, मैं परमेश्वर हूँ, और यह कि वो प्रकाश जो मेरे पीछे था वो एक दूत था, और मैं परमेश्वर हूँ, और मैं संसार में बड़े बड़े कामों को करने आया हूँ, लोगों को यह साबित करने के लिए कि मैं परमेश्वर हूँ। अब यही है जो भविष्यवाणी की आवाज ने मेरे विषय में वहाँ कैलिफोर्निया में कहा, और जिस किसी ने इसे बताया, आप जानते होंगे, कुछ तो बताया होगा, ये ऐसा नहीं था। लेकिन सबसे पहले न ही सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया के विरुद्ध विचार को ले रहा हूँ या कोई अन्य सबद को मानने वाली कलीसिया के, लेकिन केवल सुसमाचार की खातिर बता रहा हूँ। हम कुछ ही मिनटों में पेंटिकॉस्ट पर भी जाने वाले हैं। जी हाँ, सही है, बैप्टिस्ट पर। हम उस पर जाएंगे और दिखाएंगे कि परमेश्वर किसी भी संप्रदाय का पक्ष नहीं लेता है। यह सही बात है, वो केवल व्यक्तिगत का पक्ष लेता है, और वो किसी भी संप्रदाय के साथ व्यवहार नहीं करता है। उसने कभी भी नहीं किया और वो कभी नहीं करेगा उसके वचन के अनुसार, लेकिन वो हर एक संप्रदाय में व्यक्तिगत के साथ व्यवहार करता है। जी हाँ, यह व्यक्तिगत रूप से है जिससे परमेश्वर व्यवहार करता है। अब इसे बिल्कुल साफ साफ सुनिए, और यदि कभी भी किसी भी समय यह प्रश्न कभी भी आपके सामने आता है, इससे बात खत्म हो जाएगी। अब होने पाए प्रभु हमारी सहायता करे। अब ध्यान से सुने, क्योंकि चौथा पद, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है। अब देखो, जो शब्द के बारे में बात कर रहा है, कितने लोग जानते हैं कि वो शब्द SABBATH शब्द में, वो इब्रानी शब्द जिसका अर्थ होता है REST, विश्राम। कितने लोग ये जानते हैं? अंग्रेजी में ऐसा है, यकीनन। क्या शब्द एक अजीब सा शब्द नहीं लगता? यह है। क्या पवित्रीकरण एक अजीब सा शब्द नहीं लगता? पवित्रीकरण एक यूनानी शब्द है। पवित्रीकरण का मतलब पवित्र बनाना होता है। इब्रानी में मतलब पवित्र बनाओ होता है, यूनानी में मतलब पवित्रीकरण, अंग्रेजी में मतलब साफ करना होता है। सबत का अर्थ होता है विश्राम का एक दिन। यही वो पुराना सबत था, एक विश्राम का दिन। जब आप विश्राम को देखते हैं, तो इसका मतलब होता है सबत। इसे अपनी मूल हस्तलिपि में देखें, यदि आपके पास यूनानी बाइबल है, और देखें कि क्या वो शब्द, यदि आपके पास स्कोफील्ड की बाइबल है, तो उसके किनारे पर के लेख की ओर देखें, विश्राम लिखा है, और देखो कि क्या ये आपको सबत पर वापस नहीं लाता। सबत का अर्थ होता है विश्राम, तो ठीक है। अब देखो, इसलिए जबकि उसके सबत में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। अब बहुत से लोग दिन को मानते हैं, जैसे सबत का दिन शनिवार को मानते हैं, दूसरे लोग रविवार को एक भक्ति का दिन बनाते हैं, एक आराधना का दिन। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आज रात मेरी सहायता करे, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि वे दोनों ही गलत हैं। रविवार के आराधना करने वाले और सबत को मानने वाले दोनों, वे दोनों वचन के अनुसार पूरी तरह से गलत हैं। और आखिरकार ये वो वचन है जिसमें से होकर हमें देखना होगा, ना ही एडवेंटिस्ट क्या कहते हैं उसके द्वारा देखना है, या ना ही जो प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं या कैथोलिक के कहने से नहीं, यह तो वो है जो बाइबल कहती है। अब देखिए, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है। अब हम कुछ इस तरह से रखने जा रहे हैं और इसे परमेश्वर का विश्राम कहेंगे, सातवां दिन। अब देखो, और परमेश्वर, अब इस वचन को सुनना, परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सारे कामों से विश्राम किया। परमेश्वर के पास एक सबत था और वो सातवां दिन 1000 वर्ष लंबा था, जो सहशताब्दी का एक नमूना है, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सारे कामों से विश्राम किया। व्यक्तिगत सर्वनाम, अपने सारे कामों से सातवें दिन उसने विश्राम किया, यही परमेश्वर है। और इस जगह पर नियम के अंदर कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। परमेश्वर ने भौतिक रूप से विश्राम किया, क्योंकि उसने आकाश और धरती को 6 दिनों में बनाया था, और सातवें दिन पर उसने अपने सारे कामों से विश्राम किया। उसने 1000 वर्ष विश्राम किया, क्योंकि बाइबल ने कहा कि धरती पर का एक दिन स्वर्ग में 1000 वर्ष के बराबर है। स्वर्ग में 1000 वर्ष धरती पर का एक दिन है। कितने लोग जानते हैं कि वचन के दूसरे पत्रस में ऐसा कहता है, तो ठीक है। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया और उसने एक कुछ स्थान पर इस प्रकार से बताया। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि सातवें दिन के विषय में उसने कहीं यो कहा है कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों से विश्राम किया। और इस जगह फिर यह कहता है नियम कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। वो यहूदियों को उनके प्रतिज्ञा किए गए देश के मार्ग में देता है, या मिस्र से लेकर प्रतिज्ञा किए गए देश के मार्ग में वो सातवें दिन का सबत। अब सुनना, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका प्रचार पहले सुनाया गया, बाकी के परमेश्वर उन्हें व्यवस्था को या नियम को देता है, और सबत चौथी आज्ञा थी, अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं किया। अब देखो, वो व्यवस्था के बारे में बात कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने प्रवेश किया उनके विश्वास के साथ नहीं ठहरा था, उन्होंने इसे नहीं माना, उन्होंने सबत को यादगार में रखा कि वे सबत के देश को जा रहे हैं। उनके सब तकलीफों और सारी चिंताओं से हमेशा के लिए विश्राम पाने के लिए अब और काम करने वाले नहीं हैं, अब और न ही बेचैन रातें हैं। वे विश्राम की प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर जा रहे थे। ये दूध और शहद के साथ बैठी थी। अंगूर इतने बड़े थे कि 2 लोग एक गुच्छा अपने कंधों के ऊपर ढोए हुए थे। ओह, क्या ही धन्य विश्राम का देश है। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो अपने अविश्वास के कारण इसे लेने में असफल रहे। वे एक तरफ मुड़ गए थे, मिस्र में जहाँ से वे निकले थे, ये प्रतिज्ञा किया गया देश वहाँ से केवल 40 मील की दूरी पर था, और वे उनके अविश्वास के कारण 40 वर्ष तक वहाँ पर रहे। परमेश्वर ने उन्हें उनका भविष्यवक्ता दिया, उन्हें उसके चिन्ह को दिया, उन्हें अग्नि का खंभा दिया, चिन्ह और अद्भुत कार्यों को दिखाया, और उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया, और वे निकल गए मछलियों और रोटियों के पीछे, और वे जंगल में मर गए, और उनकी लोथें जंगल में नष्ट हो गई। यीशु उस झरने पर, उसने कहा हमारे पूर्व पिता 40 वर्षों तक जंगल में मन्ना खाया। उसने कहा, वो जीवन की रोटी मैं हूँ, जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से उतरी है। जीवन की रोटी मैं हूँ। मूसा ने तुम्हें वो रोटी नहीं दी, मेरा पिता उस रोटी को देता है। और वो रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से आती है। यदि कोई मनुष्य इसे खाता है तो कभी नहीं मरेगा। वहाँ अंतर है। अब देखो, उन्होंने कहा कि वो उन्होंने उस चट्टान से पिया जो जंगल में थी बहुत से वर्षों तक की समय अवधि के लिए। उसने कहा, वो चट्टान मैं हूँ, उसका पवित्र नाम धन्य हो। वो चट्टान मैं हूँ। वो भला चट्टान कैसे हो सकता है? वो चट्टान एक आत्मिक चट्टान थी। ये इसराइल के संतान के साथ साथ चली और मूसा के हाथ में एक लाठी थी जो कि परमेश्वर के न्याय की छड़ी थी। और परमेश्वर ने उससे चट्टान को मारने को कहा और उसने चट्टान को मारा। और जब उसने ऐसा किया तो चट्टान से पानी निकला और मसीह वो चट्टान था। और परमेश्वर का दंड जो पाप के लिए है उसका न्याय उस पर आ गया था। परमेश्वर ने हम सबका अधर्म उस पर डाल दिया और उस अधर्म से उसका हृदय फूट पड़ा और उसके हृदय से पवित्र आत्मा जल की नदियों के जैसे एक नाश हो रहे मरते हुए लोगों पर उंडेला गया। वो चट्टान मैं हूँ जो उस जंगल में थी। क्यों? उसने कहा, आपके कहने का अर्थ है? उसने कहा, मूसा वो ही एक जिसने तुम्हें ये बताया, उसने मेरे दिन को देखने की लालसा रखी और उसने इसे अंश में देखा। उसने कहा, अब तुम्हारा हमें इसे बताने का अर्थ ये है कि तुम मूसा से बड़े हो, कि तुमने मूसा को देखा है और मूसा को मरे हुए 800 वर्ष हो गए हैं। कहा, अब हम जानते हैं कि तेरे पास एक शैतान है। दूसरे शब्दों में पागल, हम जानते हैं कि तू पागल है। उसने कहा, अब्राहम के पहले मैं हूँ, मैं वो महान मैं हूँ जो उस जलती हुई झाड़ी में था। मैं वो आग हूँ जो जलती झाड़ी में थी। मैं वो दूत हूँ जो उनके आगे आगे गया था। और उसने कहा, मैं परमेश्वर से आया हूँ और मैं परमेश्वर के पास वापस जाता हूँ। और वो परमेश्वर से आया और देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, वापस उसी अग्नि के खम्भे पर चला गया। और यहाँ है वो आज रात 2000 वर्षों के बाद। वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, उन्हीं कामों को करते हुए अपने धन्य संतान की अगुवाई करते हुए। और बहुत से आते हैं अविश्वास के कारण। अब उसने कहा, उसने एक दिन को ठहराया, एक दिन जब परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया, तब वो किसी और विशेष दिन को ठहराकर और इस प्रकार से कि यदि वे सुने, यदि वे आए, जो सबत को मानते हैं, चांद और इत्यादि को देखकर आगे बढ़ते हैं, जहां एडवेंट भाई लोग आपको पीछे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। ध्यान दें, कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें और जिन्हें उसका प्रचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। अब सातवां पद, ओह प्रभु, मैं कहता हूँ वचन गणित के अनुसार प्रेरित है। मैं कहता हूँ वचन और हर तरह से प्रेरित है। बाइबल का गणित एकदम सिद्ध है। क्या आपने ध्यान दिया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका उसके हर काम में 13वें नंबर पर है? आप जानते हैं कि यह 13 नए प्रदेशों की स्थापना की गई थी। आप जानते हैं कि इसके झंडे में पहले 13 तारे थे। क्या आप हर एक चीज जानते हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका करता है? यह 13 संख्या में है। क्या आप जानते हैं यह बाइबल में प्रकाशित वाक्य 13 में दिखाई देता है? निश्चय ही दिखाई देता है। वो छोटा पशु, वो मेमना जो पानी में से निकलता है, न ही अधिक और बहुत से लोगों की भीड़, न ही पानी में से, लेकिन उस देश में से जहाँ कोई नहीं है। इसके दो छोटे सींग थे, नागरिक और कलीसिया संबंधी सामर्थ्य। और वो एक मेमना था, धर्म की स्वतंत्रता। और कुछ समय बाद वे एक साथ हो गए और वो अजगर की तरह बोला और उसने सारी सामर्थ का प्रयोग किया जो रोम ने उसके सामने की थी। यह हमारे देश में आ रहा है। आप इसे लिख कर ले लें। आप कलीसियाओं के संगठन और कैथोलिक को एक साथ जुड़ते देखना और देखना कि क्या बात जगह लेती है। जो लोग आग के खम्भे का अनुसरण करते हैं उनके लिए निश्चित रूप से कठिन समय होगा, लेकिन वे उस समय पर रूपांतर के लिए तैयार होते हैं। ये सही है, बस जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि मेमना उन पर जय को पाता है। बाइबल ने कहा, और वे जिन्होंने उसका अनुसरण किया, क्योंकि वे बुलाए गए और चुने हुए और विश्वास योग्य परमेश्वर के चुने हुए कहलाते थे। अब उस भविष्यवाणी पर आ रहे हैं। जिससे कि हम इसमें आगे जा सकें। ध्यान से सुनना, सातवां अध्याय, मेरा मतलब चौथा अध्याय, सातवां पद, सात संपूर्ण होने की संख्या है, तीन जीवन की संख्या है, सात संपूर्ण होने की संख्या है, और यह संपूर्ण सबत को देता है। और फिर से याद रखना, उसने बोला परमेश्वर इस प्रकार से, फिर उसने व्यवस्था की इस प्रकार से बात की, और उसके बाद फिर से उसने एक दिन को ठहराया, तीसरा दिन, तीसरी बार। तो फिर से वो किसी विशेष दिन को ठहराकर दाऊद की पुस्तक में उसे आज इतने दिन के बाद उसे आज का दिन कहता है, उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। देखो, यदि यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता था एक सबत, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यीशु मसीह के साथ समय काल पूरा होने पर बदलता है, व्यवस्था से अनुग्रह की ओर, कामों से अनुग्रह में, जो कुछ तुम करते हो वहाँ से बदलकर जो कुछ परमेश्वर ने किया है आपके खुद के गुणों पर, मेरा मतलब उसके गुणों पर, यह बदल गया। जब मूसा व्यवस्था को लेकर जंगल से बाहर आया, उसने कहा तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, सबत के दिन को पवित्र मानना। जब यीशु जंगल से बाहर आया, जब मूसा आया, तो शैतान ने उसकी परीक्षा की। जैसे ही शैतान ने उसकी परीक्षा ली, उसने उसकी बात मान ली। मूसा में एक कमजोर स्थान था, कितने लोग जानते हैं कि यह क्या था? गुस्सा। और जैसे ही उसने उन्हें सोने के बछड़े को दंडवत करते हुए देखा, उसने आज्ञाओं को फेंक दिया और उन्हें तोड़ दिया। आपको दिखाता है कि याजकगण टूट जाएगा और परमेश्वर उन्हें उसे फिर से देता है। लेकिन जब यीशु 40 दिन के उपवास के साथ जंगल से बाहर आया, तो वो भूखा था, उसके पास एकमात्र कमजोर स्थान था, और शैतान उसके पास आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी में बदल दे, यहाँ एक चमत्कार कर, मुझे देखने दे कि तू इसे करता है और मैं तुझ पर विश्वास करूंगा। यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन उस हर एक वचन से जीवित रहेगा जो कि परमेश्वर के मुख से निकलता है। वो जानता था कि वो वहाँ मूसा से नहीं मिला, क्योंकि वो वचन की ओर गया था। उसे मंदिर के शिखर पर ले गया, कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू यहाँ से कूद, और परत चढ़ाई, हवाला नहीं दिया लेकिन वचन पर, परत चढ़ाई। कहा, ऐसा लिखा है, वो दूतों को आज्ञा देगा तेरे निमित्त, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। और यीशु सीधे वचन की ओर गया और उसे फटकारा, उसे पहाड़ पर ले गया और उसे संयुक्त राज्य और जर्मनी और स्विट्जरलैंड को दिखाया, और संसार के सारे राष्ट्र जो कभी होने वाले हैं, कहा, वे सारे मेरे हैं, मैं उनके साथ वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पास युद्ध और परेशानियाँ हैं। कहा, मैं उनके साथ वो करता हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं और व्यवस्था के अनुसार चलती हैं, वे सभी शैतान के द्वारा नियंत्रित हैं। यही है जो बाइबल ने कहा, शैतान ने कहा, वे मेरे हैं, मैं उनके साथ जो करना चाहता हूँ वो करता हूँ। कहा, यदि तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा जैसा मैं हूँ। यीशु ने कहा, ऐसा लिखा है, तू केवल अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करना, उसकी सेवा करना, तुम मुझसे पीछे हट जा शैतान। क्यों? यीशु जानता था कि वो इस महान सहशताब्दी में उनका उत्तराधिकारी होगा, जब उसका राज्य आएगा, तेरी इच्छा धरती पर पूरी हो जाएगी जैसे स्वर्ग में होती है। अब और छोटे कपड़े नहीं पहने जाएंगे, वहाँ अब और कोई शराब पीने वाला नहीं होगा, वहाँ अब और कोई अभिलाषा नहीं होगी, वहाँ अब कोई और व्यभिचार नहीं होगा, वहाँ अब कोई और मृत्यु नहीं होगी, वहाँ अब और दुख नहीं होगा। वो हर एक राष्ट्र का उत्तराधिकारी बनता है, वे उसके हैं, ये सही बात है, वे उसके हैं और वो वारिस होगा। लेकिन शैतान के पास वे कुछ समय के लिए ही हैं, जो आज है जिसमें हम रह रहे हैं। लेकिन उसने एक दिन ठहराया यह कहते हुए, इतने दिन के बाद, जिसे आज का दिन कहा जाता है, और कहा, अपने हृदय को कठोर न करना, क्योंकि यदि यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता तो बाद में किसी और दिन की चर्चा न होती। मेरे एडवेंटिस्ट भाई, इसे देखो, यहाँ पौलुस ने कहा, और पौलुस ने कहा गलतियों 1:8 में, यदि आप वचन को लिख रहे हो, गलतियों 1:8, यदि स्वर्ग से कोई दूध भी आकर और इसके अलावा किसी अन्य सुसमाचार का प्रचार करता है जिसका मैंने किया है, तो वो शापित होने दो। पौलुस ने कहा, यदि यीशु ने उन्हें विश्राम का दिन दिया होता, देखो जब वो पहाड़ से उतरा तब वो नीचे आया, उसने शैतान पर जय को पाया था, उसका अभिषेक हुआ था, वो उसकी सेवकाई के लिए तैयार था। उसने कहा, तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के लोग हैं, तू हत्या न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई भी अपने भाई पर अकारण क्रोधित हो तो वो हत्या कर चुका। तुमने उन्हें कहते सुना है, वे जो पुराने समय के लोग हैं, इस दिन सबत को मानने वाले, तुमने उन्हें सुना है, जो तब पुराने समय के लोग हैं, जो व्यवस्था के नीचे थे, तू व्यभिचार न करना, उस कार्य में होना भी दोषी ठहराया जाना था। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो उसके साथ व्यभिचार कर बैठा, वो उसके साथ अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका, अलग ही ठीक उसी चौथी आज्ञा से आगे निकल गया। लेकिन क्या उसने उन्हें विश्राम दिया? आइए देखें कि उसने क्या कहा। दाऊद ने कहा, बहुत लंबे समय के बाद एक सिद्ध विश्राम आ जाएगा। सातवें दिन पर परमेश्वर ने अपने कार्यों से विश्राम किया। परमेश्वर ने सबत के दिन को आशीष दी और इसे जंगल में यहूदियों को इस प्रकार से दिया, उन्होंने प्रवेश अविश्वास के कारण, क्योंकि वचन उनके विश्वास के साथ नहीं बैठा, और फिर से उसने एक विशेष दिन को ठहराया। उसने दाऊद की किताब में कहा, इतने दिन के बाद, दाऊद के मरने के सैकड़ों वर्ष बाद, दाऊद का पुत्र जी उठेगा जो यीशु है, और यदि वे मेरा शब्द सुनकर अपने मन को कठोर न करें, परमेश्वर हृदय से बात करेगा। अब नवे पद को देखना जो आपके लिए पढ़ रहा हूँ, यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता। आठवां पद, उसने दूसरे दिन की चर्चा न होती। यदि वहाँ विश्राम का दिन होता था, यदि रविवार का दिन होता था, तो वो इसके बारे में चर्चा करता। यदि उसने कहा होता, अब कोई सबत का दिन नहीं है, अब और सातवें दिन को नहीं मानना है, मैं चाहता हूँ कि तुम रविवार को मानो, उसने ये कहा होता। पौलुस ने कहा कि उसने किया, उसने कहा होता, तुम सभी रविवार को आराधना करना, यह विश्राम होगा। तो ठीक है, यदि वो चाहता कि वे सबत को माने, तो उसने कहा होता, बस सातवें दिन को मानते रहो, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम रविवार को आठवां दिन मानो। नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। उसने कहा, यदि यीशु ने उन्हें एक दिन दिया होता, तो क्या वो इसके बारे में नहीं बोलता? अब नवा पद, तैयार हो जाएं। सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत मानने वाले परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उस मसीह के विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी अपने कामों को पूरा करके, जैसे परमेश्वर ने उसके कामों से किया सबत पर, इसे देखा। अब आइए कुछ वचन को लें और इसका समर्थन करें। तो ठीक है, जब परमेश्वर ने छह दिनों में दुनिया बनाई, तो उसने सातवें दिन विश्राम को किया और फिर कभी भी काम नहीं किया। प्रभु का नाम धन्य हो, उसने संसार को बनाया, उस पर सृष्टि को रखा और विश्राम करने चला गया, और फिर कभी भी किसी और दुनिया का निर्माण करने के लिए वापस नहीं आया। उसने काम को पूरा किया और विश्राम करने चला गया। अब आगे फिर उस हजार वर्षों के बाद फिर पाप आता है, तब मसीह का प्रतिनिधित्व किया गया था, मेमने का प्रतिनिधित्व किया गया था। अब यहूदियों को इसे सातवें दिन के विश्राम के नमूने के रूप में दिया गया था। अब उसने एक और दिन ठहराया और दाऊद की पुस्तक में कहा, इतने दिनों के बाद एक और विश्राम आ रहा है। अब वो विश्राम क्या है? मेरे साथ मती को खोलें, ग्यारहवें अध्याय और संत मती के ग्यारहवें अध्याय के अंतिम भाग को खोलें। यही है जब यीशु ने पर्वत पर अपने उपदेश को समाप्त किया, और आप देखेंगे कि उसने क्या कहा। उसने कहा, जो कोई भी स्त्री की ओर देखता है, उसके प्रति अभिलाषा करता है, वो अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका है। जो कोई भी अपने भाई से अकारण क्रोध करता है, वो भाई की हत्या कर चुका। ये सारी बातें, और उसने उस चौथी आज्ञा, उस सबत को कभी छुआ तक नहीं। अब वो समाप्त कर रहा है, और सबत परमेश्वर की महान प्रतिज्ञा है, यह एक विश्राम है। अब यहाँ देखें, जब उसने पहाड़ी उपदेश में से होते हुए समाप्त किया, यहाँ वो कहता है संत मती के 11वें अध्याय का 27वां पद, जहाँ वो 5वें अध्याय में पहाड़ी उपदेश की शिक्षा को दे रहा था, मेरे पिता ने मेरे हाथ में सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। देखो आप एक को जाने बिना दूसरे को नहीं जान सकते, क्योंकि वो देह में प्रकट हुआ पिता था। न ही पिता को कोई भी मनुष्य जानता है सिवाय पुत्र के। ऐसा दिखाई देता है कि लोग उसे देख सकते थे और बहस नहीं कर सकते थे। निश्चित रूप से परमेश्वर तीन लोग नहीं है। यदि वो तीन परमेश्वर है तो हम मूर्ति पूजक हैं। वो कौन सा एक परमेश्वर है? वे तीनों एक परमेश्वर, एक ही परमेश्वर के तीन कार्यालय हैं। पवित्र आत्मा के रूप में जंगल में उस अग्नि के खंभे में वो पिता था, वो पुत्र था जब उसने पुत्रत्व के कार्य स्थान का उपयोग किया था। थोड़ी देर रह गई है और संसार मुझे अब और नहीं देखेगा। मैं चला जाऊंगा, मैं फिर से आऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा, यहाँ तक कि तुम में रहूंगा संसार के अंत तक। देखा, वो पितृत्व, पुत्रत्व और पवित्र आत्मा भी है। ये सब वही परमेश्वर तीन अलग अलग कार्यालयों में कार्य कर रहा है। पितृत्व, पुत्रत्व, पवित्र आत्मा कभी नहीं। पहले यूहन्ना 5:7 ने कहा, स्वर्ग में गवाह रखने वाले तीन हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों एक हैं। थोमा ने उससे कहा, प्रभु हमें पिता को दिखा, यह उसे संतुष्ट करेगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ इतने लंबे समय से हूँ और तुम मुझे नहीं जानते? कहा, जब तुम मुझे देखते हो तो तुम पिता को देखते हो, और क्यों कहते हो हमें पिता को दिखा दे? अब एकीकरण ने इसे ले लिया। एकीकरण झुंड के लोग और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा बनाने की कोशिश करते हैं, बस एक कार्यालय और एक जगह, और जैसे कि आपकी उंगली एक। यह गलत है, परमेश्वर नहीं कर सकता। यीशु उसका अपना पिता नहीं हो सकता था। यदि वो था तब वो एक, भला वो अपना खुद का पिता कैसे हो सकता है? और यदि परमेश्वर एक मनुष्य है, पवित्र आत्मा से निकला हुआ, तो उसके दो पिता थे, क्योंकि बाइबल ने कहा कि पवित्र आत्मा ने मरियम पर छाया किया और वो गर्भवती हुई। और बाइबल ने कहा मत्ती 1:18 में कि वो चीज जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। फिर उसका पिता कौन है, पवित्र आत्मा या परमेश्वर? दोनों एक ही आत्मा है। या तो उसने दो आत्माओं के द्वारा नाजायज जन्म लिया था। यह एक कैथोलिक मत सिद्धांत है और यह कभी भी बाइबल की शिक्षा नहीं थी। मार्टिन लूथर ने इसे वहाँ लाया, बहुत से दूसरे कैथोलिक वाद के साथ लूथरन कलीसिया में लाया। वेस्ली इसके साथ आगे गया और यह अभी भी आगे चलते जा रहा है। लेकिन यह गलत है, यह सत्य नहीं है, ऐसा कभी नहीं था, यह कभी बाइबल का सिद्धांत नहीं था। बाइबल में कभी भी तीन परमेश्वर की शिक्षा देने की आज्ञा नहीं थी। वहाँ एक परमेश्वर है। यीशु ने कहा, हे इज़राइल सुन, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, एक ही परमेश्वर, न ही तीन परमेश्वर। अफ्रीका में वे एक बार पिता के लिए, एक बार पुत्र के लिए और एक बार पवित्र आत्मा के लिए बपतिस्मा देते हैं। और फिर बेचारा यहूदी वहाँ आकर कहता है, उनमें से कौन सा तुम्हारा परमेश्वर है, पिता, पुत्र या पवित्र आत्मा, कौन सा है? वे तीनों एक हैं। बाइबल ने कहा कि वे एक थे। यीशु एक घर था जिसमें परमेश्वर रहता था। बाइबल ने कहा कि 1 तिमोथियस 3:16 में बिना विवाद के यही तर्क है, भक्ति का भेद महान है, क्योंकि परमेश्वर देह में प्रकट हुआ था, दूतों के द्वारा देखा गया, ग्रहण किया, प्रचार किया, उस पर विश्वास किया और महिमा में ग्रहण किया गया। परमेश्वर था। बाइबल ने कहा उसका नाम इमैनुएल बुलाया जाएगा, जिसका अनुवाद होता है परमेश्वर हमारे साथ। बाइबल ने कहा कि यीशु उसमें दैहिक रूप से परमेश्वरत्व की परिपूर्णता वास करती थी। जैसे उस रात को हमने लिया था, परमेश्वर आदि में आत्मा था और फिर परमेश्वर से लोगोस या दैविक शरीर बाहर आया, जो एक मनुष्य के रूप में था, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था, जो आदि रूप था। वो धरती में आया मांस के शरीर में, यहाँ तक इससे पहले वो यीशु में आए। अब इस एक को एक बार उगल लो भाई, मैं आपको इसे साबित करूंगा। जब मूसा ने उसे देखा, उसने कहा, मुझे आपका रूप देखने दो प्रभु, और परमेश्वर ने उसे चट्टान में छिपा दिया। और जब वो वहाँ से गुजरा तो उसने कहा, यह एक मनुष्य का पिछला भाग था, यह वो दैवी शरीर था, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उस दैवी शरीर को देह बनना था, न ही कोई दूसरा व्यक्ति, लेकिन उसी व्यक्ति को देह बनना था, ताकि मृत्यु के डंक को निकाले। जैसे मधुमक्खी जब वो डंक मारती है तो ये डंक को छोड़ देती है, और उसने उसे कभी नहीं छोड़ा। वह मनुष्य देह में एक डंक को डाल सके, क्योंकि यह पाप है। लेकिन भाई, जब उसने उस इमैनुएल के देह को डंक मारा, तो उसने अपने डंक को खो दिया। जी हाँ श्रीमान, वो बनबना सकती है, लेकिन अब उसके पास कोई डंक नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं, पौलुस जब वे उसका सिर काटने के लिए गए तो उसने कहा, मौत तेरा डंक कहाँ है? तो जितना चाहे उतना भनभना और आवाज कर सकती है, कब्र तेरी विजय कहाँ है? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, वहाँ आप हैं। ऐसा करने के लिए इसमें स्वयं परमेश्वर की आवश्यकता होती है। वो आकर और देह में प्रकट हुआ था, वो आत्मा में वापस चला गया। आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आपने अब तक हमें कभी नहीं बताया जब परमेश्वर मसीह में आने से पहले देहधारी हुआ था। जब अब्राहम अपने तंबू के नीचे एक दिन बैठा हुआ था, वहाँ दो दूत और परमेश्वर आते हैं, मनुष्य के देह में उसके पास चलकर आते हैं। उनके वस्त्रों पर धूल लगी हुई थी और वे थके हुए थे, और वे वहाँ बैठ गए। और अब्राहम ने बाहर जाकर और गाय के बछड़े को उठाकर और इसे मारा, और कुछ मेमने को काटकर टुकड़े बनाए, बाहर जाकर और लिया। सारा ने कुछ मक्के के आटे को लिया और उसमें से छानकर कुछ आटे की रोटियां बनाई, और गाय से कुछ मक्खन को लिया और कुछ छाछ को लिया, और इसे वहाँ निकालकर और नीचे बैठ गया, और परमेश्वर ने उसे खाया। हालेलुया! यही कारण है, हे कलवरी के मेमने, मेरा विश्वास तेरी ओर देखता है। आप सोचते हैं कि यह परमेश्वर के लिए एक बड़ी बात है? परमेश्वर जिसने सारी पोटेशियम और कैल्शियम और संसार में की हर एक चीज को बनाया, वो अब्राहम से भेंट करने को आया। उसने कहा, तुम सोचते हो कि मैं इसे तुमसे छिपाए रखूंगा, यह देखते हुए कि तुम संसार के उत्तराधिकारी हो, आमीन, मैं इसे तुमसे छिपाए नहीं रखूंगा। परमेश्वर को अब एक, हम 16 तत्वों से बने हुए हैं। उसने बस कुछ पोटेशियम और कुछ कैल्शियम, कुछ पेट्रोलियम, लौकिक प्रकाश को लिया। उसमें कदम रखो जिब्राइल, एक शरीर। उसमें कदम रखो वर्मूड, उसने इसमें कदम रखा। स्वर्ग से दो दूत, परमेश्वर पहुंचता है और इसे मुट्ठी भर लेता है, खुद इसमें कदम रखा, नीचे आया, और वो भूखा था। धन्य उसके बारे में क्या एडवेंटिस्ट भाइयों जो मांस नहीं खाते, हम इसे थोड़ी देर के बाद लेने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, देखें कि क्या वही नाम, क्या जलती हुई झाड़ी पर वही एक स्थानांतर नहीं हुआ है? हालेलुया! और जब वो धरती पर खड़ा हुआ था, उसने कहा, अब्राहम से पहले मैं हूँ वही एक जो जलती हुई झाड़ी में था, यह सही है। एलोहिम, देखो कि क्या यह वही नहीं है? वो वही एक था जो जलती हुई झाड़ी में था, वही वो एक था जो यहाँ अब्राहम के सामने था, मांस के शरीर में, जिसने बछड़ा खाया और गाय में का दूध पिया और रोटियों पर लगा मक्खन खाया। परमेश्वर का पवित्र नाम धन्य हो। सीधे वहाँ चलकर गया और कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, और उसने अपनी पीठ को फेर लिया था। उसने कहा, अब्राहम, मैं तुमसे भेंट करूंगा, और तुम उस बालक को लाने जा रहे हो। अभी तुम 100 वर्ष के हो और सारा 90 वर्ष की है, और सारा तंबू में चली गई। हाँ, वो हंसी। उसने कहा, सारा को हंसी क्यों आई? वो उसके पीछे थी, उनके बीच में तंबू था। अब्राहम ने कहा, सारा, क्या तुम हंसी? नहीं, मैं कभी नहीं हंसी। कहा, हाँ, तुम हंसी। ये किस प्रकार की दुरानुभूति है? ये किस प्रकार का मनो को पढ़ना था? वो आज भी उसी तरह से करता है। वह यहोवा यीरे है, यहोवा राफा है, वही कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वह कभी विफल नहीं होता। उसकी ओर देखो, वहाँ वो खड़ा है। सीधे वहाँ चला गया और अब्राहम से बात की, और उसकी दृष्टि से लुप्त हो गया। और महान कुल पिता अब्राहम ने कहा कि उसने परमेश्वर के साथ आमने सामने बात की। एलोहिम, वही परमेश्वर। क्या इसे पकड़ा? ना ही कोई तीन व्यक्ति भाई, एक ही व्यक्ति के तीन कार्य स्थान। आदि में वही था, वो वही महान आत्मा था, वो झरना जहाँ सारी सत्यता, सारा प्रेम, सारी शांति थी, हर एक चीज जो शुद्ध थी इस झरने में थी। ये एक शरीर, एक दैविक शरीर का रूप लेना आरंभ करता है, उस तरह का शरीर जिसमें हम जाते हैं, ना ही महिमावंत शरीर, लेकिन जैसे दूध का शरीर, आकार, रूप। जब भी मैं एक पेड़ को देखता हूँ, सोचता हूँ यह पेड़ नेगेटिव है, कहीं न कहीं एक वास्तविक है। वो पेड़ किसी चीज से बना हुआ था, एक बुद्धिमता ने इसे बनाया। और ये सारी धरती जो करती है, वो स्वर्गीय को प्रतिबिंबित करती है, बाइबल ऐसा कहती है। और यदि यहाँ कोई पेड़ है जो नष्ट होना है, तो महिमा में एक है जो नष्ट नहीं होगा। यदि मैं एक मनुष्य को देखता हूँ, मैं एक प्यारा सा युवा जोड़ा देखता हूँ, पुरुष और उसकी पत्नी रास्ते पर से चलकर जा रहे हैं, वे हृदय प्रिय एक साथ हैं, यह किसका प्रतिबिंब करता है? प्रभु का नाम धन्य हो। वहाँ स्वर्ग में एक है जो कभी नाश नहीं होगा। यदि यह धरती पर का डेरा गिराया जाएगा तो हमारे पास पहले से ही एक रुका हुआ है दैविक शरीर। तब आपको त्रिएकता मिलती है, वो महान आत्मा पुत्र यीशु में वास करती है, यीशु कलीसिया के अंदर वास करता है। उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में और मैं तुम में हूँ। जो कुछ परमेश्वर था उसने यीशु में उढ़ेल दिया, जो कुछ यीशु था उसने कलीसिया में उढ़ेल दिया। वहाँ आप हैं, मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में, वहाँ वो शरीर है। कलीसिया के साथ यही बात है, उन्हें छोटी बूढ़ी कूर्ण स्त्री जाति की बूढ़ी महिला के किसी प्रकार के सिद्धांत को सिखाया गया है, जो इधर उधर दौड़ती फिरती और सूप का भोज करती और ताश के पत्तों की पार्टी करती है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पास गड़बड़ी का वो एक झुंड हमें मिला है। हमें बच्चों के कार्यक्रम और छोटे से सूप के भोज की आवश्यकता नहीं है। हमें जिस चीज की आवश्यकता है वो है एक ठोस पुराना सुसमाचार और विश्वास के पुरुष जो वहाँ तलवार लटकाए हुए हों और चुनौती को दे रहे हों। आज हमें जिसकी आवश्यकता है न ही कोई तुच्छ धर्म ज्ञान और किसी मनुष्य के बनाए किसी गुट के सिद्धांत की। हमें प्रकाश और सामर्थ और पवित्र आत्मा के प्रमाण में प्रचार किए गए ठोस सुसमाचार की आवश्यकता है। अब यहाँ ध्यान दें, जैसा उसने कहा, उसने किसी और दिन को ठहराया। दाऊद की पुस्तक में कहा, यदि यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता क्या उसने दूसरे दिन की चर्चा नहीं की होती? लेकिन वहाँ परमेश्वर के लोगों के लिए विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अब हम कहाँ पढ़ेंगे? मत्ती 11वां अध्याय 27वां पद, जो पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, यानी मुझे सौंपा है, जो मेरे पिता का है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। तो ठीक है, और कोई भी मनुष्य पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। देखो, ये ऐसा नहीं है कि आप कितना सीखते हैं, कितना अधिक वो बिशप आपसे चाहता है कि आप जाने। यह तो ऐसा है कि परमेश्वर कितना चाहता है कि आप जाने। यदि आप इस प्रकाशन को नहीं देख सकते हैं तो बिशप से मत पूछो, परमेश्वर से पूछो। अपने पास्टर से मत पूछो, परमेश्वर से पूछो। पुत्र उसे प्रकट करता है, वो व्यक्तिगत स्वर्ण नाम। सुनना, यह आपको झटका देगा। यहाँ वो आज्ञा है। पौलुस ने कहा, यदि वो एक और दिन छोड़ देता तो वो इसके बारे में बोलता, लेकिन यहाँ उसने क्या कहा? हे सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें सबद दूंगा, विश्राम। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ, और तू अपने प्राण के लिए सबद को पाएगा, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। देखो पौलुस ने क्या कहा, यदि यीशु ने उन्हें विश्राम दिया होता वह किसी दूसरे दिन की चर्चा ना करता, लेकिन उसने किसी एक दिन को ठहराकर, दाऊद की पुस्तक में कहता है, इतने दिन के बाद जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो, और वहाँ बाकी रहता है। अब सुनना 9वां पद, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सबत विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने पुरुष या स्त्री उसके विश्राम में प्रवेश किया है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा किया है। आप 20 वर्ष के हो सकते हैं, आप हो सकता है 30 वर्ष के रहे हों, आप हो सकता है 50 वर्ष के रहे हों, लेकिन जिस मिनट आप परमेश्वर की आवाज को अपने हृदय में खटखटाते हुए सुने, इसे कठोर न करें, फिर प्रवेश। वो जो मेरे वचनों को सुनता है उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, उसके पास अनंत जीवन है और कभी भी दोष में नहीं आएगा, लेकिन मृत्यु से जीवन में पार हो गया है। बताएं भाई ब्रैनम, क्या होता है? आपको पवित्र आत्मा मिलता है, मसीह आप में आता है, क्या यह सही है? मेरे साथ यशाया के 28वें अध्याय को खोलें और आइए पढ़ते हैं। यशाया 28वां अध्याय, देखें कि भविष्यवक्ता ने इसके बारे में क्या कहा। मत्ती 28 8वें पद से आरंभ करते हैं। यहाँ अंत के दिनों की स्थिति है, हमें एक मिनट में बंद करना होगा।
For all tables will
क्योंकि सारे टेबल उल्टी से भरे होंगे और कोई भी स्थान शुद्ध नहीं बचा। मुझे एक मिनट रुकने दो। जैसा कि एक रात को एर्नी ने कहा, वो किसी से बात कर रहा था, एर्नी पेडलर, यह भाई यहाँ जो स्विट्जरलैंड से है, उसने कहा मैं रुक गया हूँ और इसे अंदर जाने दो, मैं चाहता हूँ कि यह अंदर चला जाए। कोई भी स्थान शुद्ध नहीं बचा क्योंकि सारे टेबल उल्टी से भरे होंगे। और जैसे एक कुत्ता उसकी उल्टी के पास जाता है और एक सुअरी उसके कीचड़ की ओर, वैसे ही लोग वापस मुड़ जाते हैं। मेथोडिस्ट, आपके साथ क्या मामला है? आपके पास उजियाला हुआ करता था, क्या हुआ? परमेश्वर ने इसे आपके हाथ से ले लिया और इसे नाजरीन लोगों को दे दिया। नाजरीन लोगों, आपको क्या हुआ? आपके पास एक समय उजियाला था, परमेश्वर ने इसे आपके हाथों से ले लिया और इसे पेंटिकॉस्टल को दे दिया। सही है, आप जो चर्च ऑफ गॉड हैं और तुम में से बाकी के होलीनेस लोग, क्योंकि आपने उजियाले को ठुकरा दिया, आपने अपने आप को संगठित कर दिया और कहा हम इससे और ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर सीधा बाहर चला गया और उसने आपको दिखाया कि उसके पास ऐसे लोग हैं जो उसका अनुसरण करेंगे। आपको क्या हुआ है पेंटिकॉस्टल लोगों? आपके पास उजियाला था, परमेश्वर ने इसे आपसे छीन लिया है। अग्नि का खंभा आगे बढ़ता है, हर बार अग्नि का खंभा आगे बढ़ा, कलीसिया उसके साथ आगे बढ़ी। और जब लूथर संगठित हुआ, कैथोलिक कलीसिया से बाहर उसकी अपनी कलीसिया, अग्नि का खंभा आगे बढ़ गया और वेस्ली उसके साथ बढ़ा। वेस्ली ने संगठित किया और उसके संप्रदाय को बनाया और अग्नि का खंभा आगे बढ़ गया और नाजरीन उसके साथ आगे बढ़े। नाजरीन संगठित हो गए और चर्च ऑफ गॉड उसके साथ गया और उन्होंने कहा कि वे एक संप्रदाय नहीं हुए थे, लेकिन वे हुए थे। फिर क्या हुआ? अगली बात जो हुई, पेंटिकॉस्टल ने आग को देखा और वे दूर चले गए। और आपने क्या किया? आपने अन्य जुबान से एक मत सिद्धांत बनाया और इसे संगठन बना दिया, कहा पवित्र आत्मा को पाने से पहले सभी को अन्य जुबान में बोलना था। तब परमेश्वर सीधा आगे बढ़ गया और आपको वहीं छोड़ दिया जहां आप हैं। आपको क्या हुआ वननेस? आपने यीशु के नाम का बपतिस्मा पाया, आपने इसमें से एक मत सिद्धांत बनाया और इसके बाकी से अपने आप को अलग कर लिया और परमेश्वर सीधा आगे बढ़ गया और आपको वहीं छोड़ गया। सही है, आपके साथ क्या हुआ? असेंबली ऑफ गॉड, पुरानी प्रमुख परिषद, आपने अपनों में से एक संगठन बनाया और परमेश्वर सीधे आगे बढ़ गया और आपको छोड़ दिया और अब आप एक ठंडे औपचारिक झुंड के अलावा कुछ नहीं है जैसे वे बाकी के हैं। और अग्नि का खंभा आगे बढ़ता जाता है, हालेलुया। सारी मेजें उल्टी से भरी हुई हैं। प्रभु भोज की ओर देखें, क्यों? वे यहाँ तक, मैं उस स्थान पर गया था जहाँ वे पुरानी रोटी को लेते हैं और वो रोटी को बिना खमीर की रोटी से बनी हुई होनी चाहिए और वे इस रोटी को पापी लोगों को, सिगरेट पीने वालों, व्यभिचारियों, वेश्याओं को देते हैं जब तक कि उनका नाम उनकी किताब में दर्ज है। और यहाँ तक आप बैप्टिस्ट भी इसे क्लोज सदस्यों के लिए प्रभु भोज कहते हैं। अब तुम बैप्टिस्ट लोग थोड़ा डिंग मारते हो, परमेश्वर तुम्हारे सिंह को निकाल देगा। यह बिल्कुल सही बात है, तुम इसे बजा नहीं सकोगे। सदस्यों के लिए प्रभु भोज, आप अपने आप को अलग करते हैं जिससे कि आप जो हैं उससे अधिक पवित्र दिखाई दो। याद रखें, यह एक बैप्टिस्ट आराधनालय है, यही है जो आपको मिलता है। आप अपने आप को संगठित करते हैं। ओह, आप कहते हैं हम एक संगठन नहीं है। जी हाँ, आप हो, निश्चय ही आप हो। आप कहते हैं हम एक संगति हैं। हाँ, जो कोई भी द्वार पर आता है और वैसा ही सिखाते हैं जैसा आप विश्वास करते हैं, ये ठीक बात है। लेकिन उस एक को आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन आप उसे अपने भाईचारे से बहिष्कृत कर देंगे। यह बिल्कुल सही है। ओह, आपके पास इसे करने का एक तरीका है, वैसे ही परमेश्वर के पास करने का एक तरीका है। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ेगी, अग्नि का खंभा उसके लिए रुकेगा नहीं। सारी मेजें उल्टी से भरी हुई हैं। अब सुनना, अब यह आपको एक मिनट में चौंकाने वाला है। सुनना, मैं वचन को पढ़ूंगा। ये कौन था? वो भविष्यवक्ता यशाया। सारी टेबल उल्टी से भरी हुई है तो वहाँ कुछ भी शुद्ध नहीं बचा है। बस सफलता पाने के लिए एक दूसरे की हानि पहुँचाते हैं। कलीसिया में आते हैं, महिलाएं अपने बालों को काट कर छोटे छोटे करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, बाहर निकलकर और पुरुषों को सड़क पर आते हुए देखती हैं, आंगन में घास काटना, छोटी लड़कियां किसी को तो उस कुत्ते या भेड़िए की सीटी को बजाते हुए सुनना चाहती हैं। ये जो कुछ भी है आप जानते होंगे। ओह, आप सोचती हैं कि आप अति सुंदर हैं, क्या नहीं सोचती? और तुम पुरुष लोग मुंह में सिगार लिए हुए सड़क पर चलते हो और सभा में एक डीकन हो, आप एक कटे सींग वाले टेक्सास के बैल की तरह दिखते हैं, और तब आप सोचते हैं कि आप कोई तो हैं। यह बिल्कुल सही बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि सारी टेबल वहाँ चलकर जाते हैं और प्रभु भोज लेते हैं और ऐसा आचरण करते हैं जैसे आप कोई तो हो, और सारे सप्ताह भर धोखा देते हो और चोरी करते हो और झूठ बोलते हो। आपके साथ क्या मामला है? सारी मेजे उल्टी से भरी हुई हैं। ओह, मैं प्रभु भोज लेता हूँ। निश्चय ही हम इसे अपने कलीसिया में करते हैं। यीशु ने कहा कि यदि हम प्रभु भोज लेते हैं तो वह अंत के दिनों में हमें उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन वो जो अनुचित रूप से खाता पीता है, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, प्रभु के देह को नहीं पहचानता। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से मर भी गए। पुरानी मरी हुई औपचारिक कलीसियाएं, परमेश्वर का आत्मा आप में से जा चुका है। अग्नि का खंभा वहाँ अब और नहीं है। आप दैविक चंगाई से इनकार करते हैं, आप पुनरुत्थान से इनकार करते हैं। ओह, आप कहते हैं ओह वो ऐतिहासिक रूप से मरे हुओं में से जी उठा, तो ठीक है, आज उसके वही होने के विषय में क्या? यदि वो मरे हुओं में से जी उठा है, आप कहते हैं ओह ऐसा नहीं है, अब आप वहाँ हो, आपके पास उस तरह से पुनरुत्थान है जैसे इसे आप चाहते हैं, और परमेश्वर ने इसे उस तरह से प्राप्त किया है जैसा वो चाहता है। लेकिन बात ऐसी है कि बाइबल ने कहा, हम जो जानते हैं वो सत्य है कि वो वचन की पुष्टि करेगा, और जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, और मैं संसार के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, यही है जो वचन ने कहा। अब सबत क्या है? सारी टेबल उल्टी से भरी हुई है, कोई भी शुद्ध नहीं बची। वो किसको ज्ञान सिखाएगा? ना ही संसारिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान। वो किसको ज्ञान सिखाएगा? किसको वो अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? ओह, परमेश्वर धन्य हो, हमारा संगठन इस पर विश्वास नहीं करता है, वे इसके साथ नहीं खड़े हो सकेंगे। कौन परवाह करता है कि आपका संगठन क्या विश्वास करता है? परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहता है? ओह खैर, हमारा पास्टर, आप जानते हैं, वो पढ़ा लिखा है। ओह यकीनन, निश्चय ही इतनी अधिक शिक्षा को प्राप्त किया है, उन्होंने इसमें से परमेश्वर को छोड़ दिया सचमुच, क्योंकि आप उन्हें वचन को बता सकते हैं और वे वहाँ आएंगे और कहेंगे, ठीक है, मैं इसे इस तरह से विश्वास नहीं करता। ओह, तुम डरपोक जीव हो, मुझे आपको कहने दो, यहाँ देखो, किसको वो अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? क्या उनको जो स्तन छुड़ाए हुए हैं, और क्या उनको जो दूध से छुड़ाए हुए हैं और स्तन से अलगाए हुए हैं? एक दिन मेरा एक पड़ोसी आया, उसने कहा, बिली, शहर का कोई एक पास्टर जो सबसे छोटा प्यारा सा व्यक्ति है जिसे आपने कभी देखा है, कहा, मैं और पत्नी अपना पैजामा पहने हुए थे, लगभग आधी रात का समय था, और वह छोटा सा पास्टर अंदर चलकर आया और उसने हमारे साथ कॉफी पी, और वो उसे दूसरे पड़ोसी के घर लेकर गया और उसने उनके साथ हाथ मिलाया। उसके पास एक छोटा सा ताश के पत्तों का खेल था और वो वहाँ बैठ गया और उनके साथ ताश खेलने लगा। कहा, ओह, वो सबसे मिलनसार छोटा सा व्यक्ति था जिसे आपने कभी देखा है। कहा, ओह, हम उससे प्रेम करते हैं, हम किसी भी बात के लिए उसे छोड़ नहीं पाएंगे। मैं थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, मैंने सोचा, अच्छा। कहा, ओह, क्या आप नहीं सोचते कि हर कलीसिया को उस तरह के एक मनुष्य की आवश्यकता है? मैं इसका उत्तर नहीं दे सका। उसने कहा, एक और छोटे से स्थान में, कहा, उनके पास क्या ही सुंदर स्थान था, ये सेवक और उसकी पत्नी प्यारे लोग हैं, बाहर जाकर और बच्चों के साथ इस कदर व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि उनके पास एक बाइबल स्कूल भी है। और कहा, उनके पास बस इतना कुछ है, बस छोटे बच्चों के साथ चीजों को लबालब भर दिया। कहा, ओह, वह छोटे बच्चों को हर तरह की छोटी छोटी कहानियों को सुना सकता है। मैंने कहा, यह अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। मैं वापस चला गया, मैं तभी कनाडा से आया था, मैंने सोचा, मैं यहाँ हूँ प्रभु, लोग मेरे साथ क्या मामला है, मैं ऐसा क्यों नहीं करता हूँ। मैं अपनी कार धोने चला गया, मैंने सोचा, परमेश्वर, मैं बूढ़ा मनुष्य बनते जा रहा हूँ और मैं यहाँ हूँ, मैं लड़ा हूँ, मैं रोया हूँ, मैंने विनती की है, और मैंने जो कुछ भी पाया एक बड़ी निंदा ही पाया है, कुछ भी किसी को तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा कहने दो, ओह वो पुराना पवित्र शोर मचाने वाला, ऐसा ही कुछ तो। मैंने इसके बारे में सोचा और एक आवाज मेरे पास आई, कहा वे लोग ठीक हैं यदि वे ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी भी नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें तलवार लेकर और यहोशू की नाई वहाँ खड़े होने और चुनौती को देने के लिए बुलाया है। भाई किसी उस पुराने समाज या किसी कलीसिया संगठन के साथ समय मत गवाओ, लेकिन शैतान को चुनौती दो, सबसे आगे खड़े रहो, सही को सही करो और गलत को गलत, वचन का प्रचार करो और देखो कि किसके पास उस पर भरोसा करने का विश्वास है, उसे वहाँ आगे रखो। मुझे उस कार को हर समय धोने के लिए जल्दी जल्दी करना पड़ा। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तब मुझे अच्छा महसूस हुआ, यह ठीक है प्रभु, मैं उसे थोड़ा और कस कर पकड़ लूंगा और मैं इसे अपने हाथ में लेकर मरना चाहता हूँ। मैं किसको अपने समाचार का अर्थ समझाऊं? सुनना, टेबल उल्टी से भरे हुए हैं, क्या उनको जो दूध छुड़ाए हुए और स्तन से अलगाए हुए हैं? अब देखो, क्योंकि वैसे ही आज्ञा के ऊपर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ, क्योंकि हकलाते होठ और अन्य जुबान के बोलने के द्वारा मैं इन लोगों से बात करूँगा। जिनसे इसने कहा यह सब्बत है, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, यह आराम है, परंतु उन्होंने सुनना न चाहा, क्योंकि प्रभु का वचन उनके पास आया, किसी ने इसका प्रचार किया, आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, पर नियम है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे और घायल हो जाएं और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं। विश्राम क्या है? विश्राम कब आया? जब लोगों ने अन्य जुबानों में बोला और उनके होठ हकलाते होठ थे, हकलाते हुए होठ, वे कुछ नहीं बोले, वे हकलाए। ऐसा कब हुआ? पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आया, यह विश्राम है, वो पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा हे सब थके हुए और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, अनंत जीवन, जोई परमेश्वर का खुद का जीवन। परमेश्वर आपके अंदर आएगा और आपका भाग बनेगा, वो आपको जन्म देगा और आपको एक पुत्र और कन्या बनाएगा। अब देखो, वो तीसरा विश्राम था जो उसने दिया था, पहला परमेश्वर ने इसे उसके कार्य से पाया, दूसरा इसराइल ने इसे व्यवस्था में पाया, तीसरा कलीसिया ने इसे पाया परमेश्वर के भाग के नाई। तीन जीवन की संख्या है, ये कितने लोग जानते हैं? हर समय आप तीन को देखते हैं, ये जीवन है। ध्यान दें, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की, तीसरे दिन पर जीवन था। ये कितने लोग जानते हैं? तीसरे दिन, सृष्टि के तीसरे दिन पर जीवन आया। त्रिएकता पिता लोगों से ऊपर था, एक अग्नि के खंभे में, पुत्र एक मनुष्य था जिसने लोगों से बात की और उन्हें तैयार किया। पवित्र आत्मा तीसरा कदम था, जो पवित्र आत्मा था लोगों में, परमेश्वर, जीवन, पिता, पुत्र, विश्राम, परमेश्वर का विश्राम, इज़राइल का और विश्राम, कलीसिया का, सबत को मानने वाले। इसलिए यदि आपने कभी भी पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, अब भी आपने कभी भी परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं किया है, आपको ऐसा नहीं कहना है ओह मैं नहीं कर सकता, मैं धूम्रपान करना चाहता हूँ, मैं बस इसे नहीं कर सकता, मैं एक मसीही हूँ, मैं वास्तव में शराब नहीं पीना चाहता लेकिन मैं एक मसीही हूँ, मैं बस नहीं पी सकता, पीना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मुझे पसंद है। यदि आप महिलाओं के प्रति अभिलाषा रखते हैं, यदि आप इन सारे अधर्म के कामों को करते हैं, तो आपने अभी तक उस विश्राम के समयावधि में नहीं पहुंचे हैं, आपने कभी भी विश्राम में प्रवेश नहीं किया है। और जब आप इस विश्राम में प्रवेश करते हैं, आपने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है, क्यों? आप परमेश्वर के भाग हो, आप विश्राम करते हैं अनंतता के लिए, वहाँ आप हैं, यही वो सबत है। हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। उसने किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद, जो आज है, दाऊद की पुस्तक में, जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। बस अब एक या दो वचन यहाँ और लेंगे, हम समाप्त करेंगे, क्योंकि वो जो मसीह के विश्राम में प्रवेश कर चुका है। मेरे पास आओ तुम सारे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे। आपने भी परमेश्वर की नाई सातवें दिन पर अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। आपका हो सकता है 30वां वर्ष हो, 40वां वर्ष हो, 50वां वर्ष हो, ये जो कुछ भी है, आपने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा किया है। अनंतता के लिए आप अब संसार की चीजों को और नहीं चाहते, संसार आपके लिए मर चुका है। अब 11वां पद, अब ध्यान से सुनना। आइए हम उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करें, न ही इस एक से, न ही इससे, लेकिन इस एक से, कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। यह क्या है? अग्नि का खंभा यहाँ है, प्रभु का दूत हमारे साथ है, वो उसी काम को कर रहा है जो उसने कहा था कि वो करेगा, और लोग यहाँ वहाँ ठोकर खाते फिरते हैं, कहते हैं ओह ठीक है, मैं सोचता हूँ कि यह ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ओह मैं सोचता हूँ कि यह ठीक है। सावधान रहो कि आप उसी अविश्वास के फंदे में पड़कर ना गिरें, आप इसे अपने पूरे हृदय से लें। देखो, क्योंकि परमेश्वर का वचन न ही कलीसिया का मत सिद्धांत, परमेश्वर का वचन तेज, अधिक शक्तिशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी अधिक चौखा है। सुनना, यहाँ तक आत्मा को, प्राण को छेदता है, गाट गाट और गुदे गुदे को अलग करता है, और सुनना, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यह क्या था? पवित्र आत्मा आकर और कह सकता है, तूने एक ऐसे ऐसे काम को किया और तूने यह किया और वो किया, तुम्हें इस तरह की बीमारी है और वो है, यदि तुम इसे सही करोगे, तुम यह करोगे। देखा, विचारों को परखने वाला। और लोग कहते हैं ये क्या है? क्योंकि यह मानसिक मनो को पढ़ना है, क्योंकि यह एक, वो एक भविष्य बताने वाला है। देखा मेरा क्या अर्थ है? यह एक दुष्ट पुराना व्यभिचारी संसार है जो परमेश्वर को नहीं जानता। यह तेज विचारशील दोधारी तलवार से भी अधिक प्रबल है और हृदय के इरादों और विचारों को जांचता है। अब ये कौन है जो हृदय के इरादों को जानता है? परमेश्वर। आपने कहा तो ठीक है, बाइबल ने कहा परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर विचारों को जांचता है। अब्राहम ने उसकी पीठ फेरी थी और इसी रीति से परमेश्वर ने अपनी पीठ तंबू की ओर फेरा हुआ था, और सारा हंसी, और परमेश्वर ने मुड़कर कहा, सारा को क्यों हंसी आई? हृदय के विचारों को एक जांचने वाला। मैं चाहता हूं कि यह बात थोड़ी आपके अंदर चली जाए। फिर जब उस तरह की सेवकाई ऊपर आती है जिसकी परमेश्वर ने अंतिम दिन में प्रतिज्ञा की थी, क्या होता है? मानसिक मनो को पढ़ने वाला है। क्या उन्होंने स्वयं प्रभु को बाल जबूल नहीं बुलाया? उसने कहा, यदि उन्होंने घर के स्वामी को बाल जबूल कहा तो वे उसके चेलों को और कितना अधिक कहेंगे। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, यह दिखाता है कि आपको काफी दिलचस्पी है, आपको सुसमाचार सुनने के लिए वातानुकूलित इमारत में आने की आवश्यकता नहीं है। आप इतने भूखे होते हो कि ऐसी जगह पर आते हो। परमेश्वर हमें कभी भी इसके अलावा और कुछ नहीं बनाने देगा, हम इसे इसी तरह से पसंद करते हैं। बस एक छोटा सा पुराना कमरा, लेकिन हम इसे इसी तरह से पसंद करते हैं। परमेश्वर चमक धमक में वास नहीं करता, परमेश्वर नम्रता में वास करता है। हम इसे इसी तरह से पसंद करते हैं। हम यहाँ आकर खुश हैं और आप भी इस तरह के एक स्थान में बैठकर खुश हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी गर्मी हो, आपको अपने नए सूट, आपके नए कपड़ों पर कितना पसीना आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनंत जीवन को सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन को जो आपके हृदय के विचारों को जानता है। अग्नि का खंभा जो इज़राइल के बच्चों के ऊपर मंडरा रहा था, वो आज रात यहाँ मंडरा रहा है। मैं इसकी चुनौती दे सकता हूँ, कोई भी व्यक्ति यहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ के नीचे खड़ा नहीं हो सकता है बिना परमेश्वर के। बस उसे सीधे बाहर फेंक देगा और उसे बताता है कि वो क्या था। ये सही बात है, वहाँ आप हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये वही आत्मा है जो इज़राइल के संतान को उनके विश्राम की ओर अगुवाई की, और वे अविश्वास के कारण गिर गए। आप मत गिरना, यह आखिरी मौका है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जीवन वहाँ से होकर आता है। धर्मीकरण मार्टिन लूथर अब भी एक धर्म का एक रूप है। पवित्रीकरण मार्टिन लूथर जॉन वेस्ली, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जीवन, धर्मीकरण, विश्वास करना है, पवित्रीकरण साफ करना है, पवित्र आत्मा जीवन का भरा जाना है। ना ही लूथरन युग में से होते हुए उनके पास यह एक रूप में था, ना ही वेस्ली युग में से होते हुए उनके पास यह एक रूप में था, लेकिन यह वो युग है जब पवित्र आत्मा स्वयं आता है। और यदि आपने इसे नहीं पाया है तो आप भला कैसे, क्या आप अद्भुत कार्यों पर विश्वास कर सकते हैं? यह विश्वास करने के लिए आप में परमेश्वर को लेता है। आप परमेश्वर की तरह कार्य करते हैं, आप परमेश्वर की तरह जानते हैं, आप परमेश्वर की तरह सोचते हैं। बाइबल ने कहा कि तुम अप्रवीण छोटे परमेश्वर हो। यीशु ने ऐसा ही कहा क्योंकि तुम परमेश्वर के भाग हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं एक छोटा ब्रह्म हूँ और आप जो भी आप हो, और क्योंकि आपके माता पिता का वो नाम है, आपका जो स्वभाव है वो इसलिए है क्योंकि आपके माता पिता ऐसे हैं, कारण आप उनसे जन्मे थे। और वो कारण कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो और अद्भुत कार्यों में और चिन्ह और चमत्कारों में विश्वास करते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो, आप जीवन को पाते हैं, तीसरे पर जीवन आता है, तो ठीक है। जब यीशु पहाड़ पर चढ़कर गया, वो जहाँ कहीं भी गया, उसने पतरस, याकूब और यूहन्ना, तीन गवाहों को लिया। तीन जीवन की संख्या है, इसे पकड़ा, प्रेम, आनंद, शांति। अब आइए, अब जल्दी से अध्याय के अंत की ओर जाएं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत अधिक चोखा है और यहाँ तक हृदय की इरादों को जांचता है। ना ही सृष्टि की कोई वस्तु है जो उसकी दृष्टि में प्रकट नहीं हुई है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। भाई, वहाँ उसके इसे जाने बिना एक मक्खी भी वहाँ एक खंभे पर नहीं बैठ सकती। सारी चीजें स्पष्ट हैं। भाई, वो हर एक बात को जानता है जो आपने कभी की है, हर एक विचार जो आपने कभी सोचा था, यही तो वो है। हम इसी तरह से उस पर विश्वास करते हैं। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आता है और हमें कलीसिया में रखता है, तो वो उसके अस्तित्व को संचालित करने के लिए कलीसिया में दानों और चीजों को रखता है। यदि परमेश्वर, वो अनंत परमेश्वर है, वो बीमारों को चंगा करता है, वो मुर्दों को जिला सकता है, वो कोढ़ियों को शुद्ध कर सकता है, अंधे को देखने को लगा सकता है, वो दर्शनों को दे सकता है, वो उसके कलीसिया के माध्यम से इन सभी प्रकार के कामों को कर सकता है, क्योंकि यह आप में परमेश्वर है, वहाँ वो कलीसिया है। वो कलीसिया कैसे कलीसिया बनती है? इसे जुड़ने के द्वारा, नई श्रीमान, हाथ मिलाने से, नई श्रीमान, जल के बपतिस्मा के द्वारा, नई श्रीमान, सदस्य बनने से, नई श्रीमान। इसे कैसे पाएंगे? क्योंकि एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा लिया है, वहाँ आप हैं। रोमियो 8:1। सो इसलिए अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, कोई सांसारिक दंड नहीं, वे आप पर कुछ भी दोष नहीं लगा सकते। इसलिए जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, वहाँ आप हैं। इस तरह से आप अपनी मसीहत को जांच सकते हैं। इसी तरह से आप जान सकते हैं कि आपने उस विश्राम में प्रवेश कर लिया है। संसार आपको अब और चिंतित नहीं करता है। निश्चित रूप से आप इसे देखते हैं, इससे दूर चले जाते हैं। आपके पास सोचने के लिए कुछ बेहतर है, वहाँ आप हैं, कोई दंड नहीं। इसी तरह हम देह में प्रवेश करते हैं और आप सुरक्षित हैं हमेशा के लिए। बाइबल ऐसा कहता है। यहाँ इब्रानियों के 10वें अध्याय की ओर देखें, उसने कहा, क्योंकि जहाँ बैल और बलि चढ़ाए जाते थे, हर वर्ष पाप का स्मरण करके किया जाता था, लेकिन यह मनुष्य एक बलिदान के द्वारा, उसका पवित्र नाम धन्य हो, क्योंकि उसने एक ही बलिदान के द्वारा सदा के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया, ना ही अगली बेदारी तक, लेकिन सदा के लिए। पुरानी चीजें बीत गई हैं और सारी चीजें नई बन गई हैं। हम उजियाले में चल रहे हैं, सुंदर उजियाला, पक्षी अलग ही गाते हैं। यहाँ बैठी हुई इस शराबी महिला की ओर देख रहा था, लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। मैं सोचता हूँ, रोसेला, एक बड़ी बड़ी चमकीली चमगादड़ आँखें, जो शिकागो की सड़कों पर चल रही थी, नशे में, यहाँ वहाँ लड़खड़ाते हुए हर तरह का पाप जो वहाँ था उसमें चल रही थी, नशा करना और वो सब कुछ जो वो कर सकती थी। और एक रात पवित्र आत्मा जो तेज और दोधारी तलवार से भी अधिक शक्तिशाली है कहा, महिला तुम एक शराबी हो। हालेलुया, क्या यह वही परमेश्वर नहीं है जो वहाँ पर पहले था, जो जानता था कि सारा उसके पीछे हंसी? मैं नहीं जानता कि वो क्या है। श्रोताओं के बीच वो एक और छोटी स्त्री के पास गई और उसे लिया और वहाँ ले आई, कहा तुम एक नशे की आदी हो। वो मन के विचारों को किस तरह से परखता है। और वहाँ महान बड़े बड़े वैभवशाली सेवक वहाँ बैठे हुए थे जो दुनिया भर में सुसमाचार के प्रचारक हैं, अपने हाथों को पीछे बांधे हुए टी शर्ट में। सोचा कि हम उन्हें नहीं जानते हैं, जैसे वे इस तरह की एक सभा के नीचे बैठ सकते हैं और परमेश्वर प्रकट नहीं करेगा कि वे कौन हैं। वहाँ बैठे हुए थे वे अलग दिख रहे थे, जैसे वे कुछ तो और हैं। पवित्र आत्मा जानता था कि वे कौन थे और वे वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने अपने हृदय में यह सोचा कि यह मानसिक मनो को पढ़ना है। इतना अधिक वे परमेश्वर के बारे में नहीं जानते इसकी तुलना में एक हॉट नॉट या अफ्रीकी जाति मिस्र की रात के बारे में जानते होंगे। यह सही बात है, वे इसे शब्द से जानते हैं लेकिन आत्मा से नहीं। शब्द मारता है लेकिन आत्मा जीवन को देता है। ऐसा ही है, यही वो विचार है, दो धारी तलवार से भी तेज शक्तिशाली हृदय के विचारों को परखने वाला। सुनना, देखो, और सृष्टि की कोई वस्तु उसकी दृष्टि से छिपी नहीं है, वरन उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं, जिससे हमें काम है। सो देखते हुए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, अब सुनना, बीमारों के लिए जो स्वर्गों से होकर गया है अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। दृढ़ता से थामे रहें इसका मतलब यह नहीं है कि बस गवाही को देते रहें। यदि आप जीवन को नहीं जीते हैं तो आप इसे दृढ़ता से थामे नहीं रहते। आप एक ढोंगी जीवन को जी रहे हो। आप बेहतर होगा कि आप बाहर रहें और बस कहें कि आप एक पापी हैं और इसके बारे में भूल जाएं। मसीह होने का दावा करके कुछ और जीवन को ना जिए आप दुनिया की अब तक के सबसे बड़े ठोकर का कारण हैं। यदि आप पापी हैं तो इसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, परमेश्वर के साथ ठीक कर लें। यदि आप एक मसीही हैं तो अपने अंगीकार को दृढ़ता से पकड़े रहें, वहाँ बने रहें। अब इसे देखें, मैं इसे लेना चाहता हूँ, इससे पहले हम यहाँ से जाएं। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। सुनना, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो सके और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर का नाम धन्य हो। सुनना, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, आप मुझसे ये सवाल पूछेंगे, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया था। मैं जानता हूँ यही है जिस बात पर हमेशा आप जाते हैं, ये सच है। एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करने के अलावा और क्या कर सकता है? यह बिल्कुल सही है, वो इतना ही कर सकता है। लेकिन जब परमेश्वर उस विश्वास को पहचान लेता है तो वो आपको पवित्र आत्मा देता है। अब मुझे क्या करना है भाई ब्रैनम? क्या मुझे चिल्लाना है? जरूरी नहीं। क्या मुझे अन्य जुबानों में बात करना है? जरूरी नहीं। आप चिल्ला सकते हैं और जुबानों में बोल सकते हैं, दोनों कर सकते हैं और फिर भी एक मूर्ति पूजक की तरह जीते हैं और अब भी महिलाओं के प्रति अभिलाषा रखते हैं। आप अब भी धूम्रपान कर सकते और शराब पी सकते हैं और हर एक चीज मैंने देखा है कि लोग अन्य जुबान में बोलते हैं और सीधे बाहर जाकर और कुछ सबसे गंदे धूर्त व्यवहार के कार्य को करते हैं जो मैंने कभी देखे हैं। मैंने उन्हें चिल्लाते देखा है और घड़ियाल के आंसू रोते देखा है और जो कुछ भी आपने पकड़ा हो उसे चोरी कर लेते हैं। मैंने उन्हें बाहर जाते देखा है और हर लड़की रास्ते से गुजरती है मुड़ते हैं। यह एक सही चिन्ह है कि आपके पास यह नहीं है, यह सही बात है। लेकिन भाई, जब आप मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके होते हो, वे सारी चीजें मर जाती हैं और आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि होते हैं। यदि आप कुछ गलत देखते हैं तो आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर दया कीजिए। और यदि परेशानियों को देखते हो बजाय इसके कि जाकर और बेकार की बातें करें और इसे और भी बदतर करने की कोशिश करें, आप उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसे सही करने की कोशिश करेंगे और इसे तुरंत शांत करने की कोशिश करेंगे। यही आप में परमेश्वर का आत्मा है। यदि आप गलती करते हैं, आप उनके अधीन होते हैं। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आप उसे तुरंत ठीक कर देंगे। अपने क्रोध पर सूर्य को डूबने न दे। इसी तरह से आप जानते हैं कि आप मृत्यु से जीवन में पार हो गए हैं। आपके पास प्रेम, शांति, आनंद, सहनशीलता, भलाई, नम्रता, धीरज होता है। हमारे पास महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, जो हमारे अंगीकार करने पर बिचवाई करने के लिए तैयार है। यह क्या है? यह तब हुआ जब यीशु लोगोस में वापस चला गया, अग्नि का खम्बा जिसने इज़राइल के बच्चों का नेतृत्व किया। उनकी उपस्थिति में बैठे हुए वो महान झरना, उन उज्यालों का मेघधनुष जो बाहर आया, सात सिद्ध आत्माएं, प्रेम की सिद्ध आत्मा। अब देखो, पहला है सिद्ध प्रेम, यही परमेश्वर का प्रेम है, शुद्ध और बिना मिलावट का। अगला जो वहाँ आता है फिलियो प्रेम है, यही वो प्रेम है जो आपका अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए होता है। अगला उसके बाद गिरता है जो वासना पूर्व प्रेम है। अगला अधर्म प्रेम है और बस नीचे चलता जाता है जब तक ये गंदगी न हो जाए, बस दूषित होता जाता है, दूषित होता जाता है। और हर एक जिसकी शुरुआत हुई थी उसका अंत है और वो सब तुरंत ले लिया जाएगा और उसका बिल्कुल भी कोई स्मरण नहीं होगा और किसी दिन सिद्धता पर सीधा वापस आ जाएगा। और एक ही रास्ता, आप यहाँ आधे रास्ते में नहीं रुक सकते और यहाँ पर नहीं पहुँच सकते। आपको पूरे रास्ते में से होकर अंदर जाना होगा, भरोसा करते हुए यीशु मसीह आपको जो उद्धार देता है, विश्वास के द्वारा उस पर पूरी तरह से विश्राम करते हुए। वहाँ एक ईमानदारी की आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से आती है, यही वो झरना है, परमेश्वर का झरना, यही वो ईमानदारी है। उसके बाद वो मनुष्य है जो उसके पड़ोसी के लिए एक भले काम को करेगा। उसके बाद वो व्यक्ति है, आपको उसे देखना होगा। उसके बाद वो व्यक्ति है, एक चोर है। उसके बाद वो व्यक्ति है, हत्यारा है। देखते रहें, देखा कि यह कैसे दूषित होता है, ठीक आगे और आगे। लेकिन वे सभी चीजें एक वास्तविक के बारे में बताती हैं। यही तो मैं कहता हूँ, हर समय जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आप एक पति पत्नी को सड़क पर चलते हुए देखते हैं, प्रिय हो सकता है वे 80 वर्ष के हों, यह केवल इतना बताता है कि वहाँ स्वर्ग में एक युवा जोड़ा है जो उनका प्रतिनिधित्व करता है। स्वर्ग में यदि यह धरती पर का डेरा गिराया जाता है तो हमारे पास वहाँ एक है। यदि आप किसी ऐसे मनुष्य को देखते हैं जो धोखा देता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, तो बस याद रखना उसका भाग उसके लिए नरक में रुका हुआ है। उसका स्थान जहाँ वो अग्नि और गंधक से परमेश्वर और पवित्र दूतों की उपस्थिति में तड़पेगा, वो वहाँ तड़पेगा, ना ही हमेशा के लिए। उसे हमेशा के लिए तड़पाया नहीं जा सकता। हमेशा के लिए का मतलब ऐसा नहीं है पूरा सारे समय के लिए, अनंतता हमेशा के लिए होती है, अनंतता जिसका कोई आदि या अंत नहीं होता है, लेकिन अधिक समय के लिए है, समय की एक अवधि होती है। बाइबल ने कहा हमेशा के लिए और संयोजन हमेशा के लिए। योना ने कहा कि वो वेल मछली के पेट में था अधिक समय के लिए, समय की एक अवधि है। लेकिन देखो, केवल एक ही अनंत जीवन है और वो है परमेश्वर। और यदि आपको हमेशा के लिए तड़पाया जाना है और आप कभी नहीं मर सकते, तो आपके पास अनंत जीवन है। आपको हमेशा के लिए तड़पाया नहीं जा सकता। आपको हो सकता है 10 करोड़ वर्षों तक तड़पाया जाए परमेश्वर और पवित्र दूतों की उपस्थिति में आग और गंधक के साथ। मैं नहीं जानता कि यह कब तक नियुक्त किया गया है, लेकिन अतः इसका अंत होना ही है क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी। और केवल परमेश्वर के पास ही अनंत जीवन होता है। वो जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, अधिक समय का जीवन नहीं है, उसके पास अनंत जीवन है। वो जीवन जो शुरू होता है, नहीं आगे यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन वहाँ से ऊपर तक अनंत जीवन, जो ही परमेश्वर का खुद का जीवन नीचे आता है और मनुष्य में रहता है, और वो परमेश्वर के साथ अनंत है और मर नहीं सकता। यही है जो वचन ने कहा। इस पर सोचें, क्या वहाँ दो अनंत जीवन है? आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। क्या आप दे सकते हैं? वहाँ एक अनंत जीवन है और वो है परमेश्वर का जीवन। यह दूसरी तरह का जीवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता यह क्या है, इसका अंत हुआ है। और जिस चीज की शुरुआत हुई थी उसका अंत है। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत नहीं थी, उसका कोई अंत नहीं है। और परमेश्वर ने कहा कि वो हमें अनंत जीवन देगा बिना शुरुआत का। हमें बस उसका एक भाग बनाया गया था। और असल में जो जीवन हम में है, ये मनुष्य प्रकृति के द्वारा यहाँ नहीं लाया गया था। प्रकृति हमें एक आत्मा देती है, लेकिन वो आत्मा मर गई और हमने परमेश्वर की आत्मा पाई है। परमेश्वर की महिमा हो। क्या परमेश्वर एक मनुष्य था? निश्चय ही। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। परमेश्वर क्या था? एक दैविक शरीर, एक देह, और वहाँ मनुष्य को वैसा ही बनाया गया था और उसे वाटिका के ऊपर रख दिया गया। लेकिन चेतनाओं में मिट्टी जोतने वाला कोई मनुष्य नहीं था। फिर उसने धरती की मिट्टी से मनुष्य की सृष्टि की और पशु जीवन में, और उस मनुष्य ने भूमि को जोता और वो मनुष्य अपराध के कारण गिर गया सही तरह से। और परमेश्वर दैवी शरीर नीचे आकर और देहधारी हुआ और मनुष्य को छुड़ाने के लिए हमारे बीच में डेरा किया। सो ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। आप आरंभ से ही पापी हैं। आपने अधर्म में आकार लिया है। आप पाप में जन्मे, झूठ बोलते हुए संसार में आए। आप यहाँ इस दुनिया में अपने पिता और माता की यौन इच्छा के द्वारा जन्मे थे, और आप उतने ही नरक से बंधे हुए हैं जितने आप हो सकते हैं। मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या करते हैं। आप हो सकता है कभी झूठ नहीं बोलते हो, चोरी नहीं करते हो, सब आज्ञाओं को मानते हो और सब कुछ मानते हो, और आप नरक चले जाएंगे जैसे निश्चित रूप से एक पक्षी अपने घोंसले में जाएगा। लेकिन एक ही जरिया है कि आप कभी फिर से जी सकते हैं, वो है पवित्र आत्मा, परमेश्वर के अनंत जीवन को स्वीकार करना। आपको क्या बनाया जो आप हैं? आदि में जब पवित्र आत्मा धरती के ऊपर मंडराया तो वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट के अलावा और कुछ नहीं था। एक छोटा सा ईस्टर फूल ऊपर आता है। परमेश्वर ने कहा यह सुंदर लग रहा है, बस मंडराते रहो। फूल ऊपर आते हैं, घास ऊपर आती है, पेड़ ऊपर आते हैं, पक्षी मिट्टी में से उड़ने लगे, जानवर ऊपर आते हैं, एक मनुष्य ऊपर आता है। अब यह कैसे किया गया? पवित्र आत्मा के मंडराने के द्वारा इन वस्तुओं को एक साथ लाते हुए, पोटेशियम, कैल्शियम, फूलों को बनाते हुए, जानवरों को बनाते, आपको बनाते हुए, और अब आपके पास एक खुला विकल्प है। परमेश्वर आपके लिए वापस मंडराता है और कहता है, मेरी आवाज सुनो, अपने हृदय को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के दिनों में किया था। यहाँ वह नीचे आता है, वचन को प्रचार करता है। सुसमाचार उनके लिए प्रचार किया गया था जिन्हें इसमें विश्वास नहीं था, इसलिए इससे उनका कोई भला नहीं हुआ। उन्होंने इसे सुना लेकिन उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर नीचे उतर आया, उसने उन्हें एक अग्नि के खंभे को दिखाया, उसके नबी के द्वारा चिन्ह और अद्भुत कार्यों को दिखाया कि वो उसके साथ था। उन्होंने इसका विश्वास नहीं किया। ओह, उन्होंने अद्भुत कार्यों को देखना पसंद किया, उन्होंने नबी को सुनना पसंद किया, लेकिन जहाँ तक इस पर विश्वास करने की बात है, उन्होंने विश्वास नहीं किया। उनके जीवन साबित करते हैं कि उन्होंने नहीं किया। अब उसने कहा, तुम अविश्वास के उसी उदाहरण के सामने मत गिरना, क्योंकि इस अंतिम दिन में अन्य जातियों की कलीसिया के लिए परमेश्वर फिर से प्रकट हुआ है। वही चिन्ह, वही अद्भुत कार्य, वही अग्नि का खंभा प्रमाणित हुआ है, साबित हुआ है। आइए हम अपने हृदय को कठोर न करें और अविश्वास के उस लुभाव में वहाँ वापस न गिरें, क्योंकि हम धरती पर सड़ जाएंगे और यही सब कुछ होगा। और जब पवित्र आत्मा आपके हृदय पर खटखटाता है, फिर इतने दिन के बाद आज जब तुम मेरी आवाज़ सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करना, कहता है, मेरे बच्चों यह वो सत्य है। संदेश वाहक को मत देखो, संदेश को सुनो, इसे विश्वास करो, अपने हृदय को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के दिनों में किया था। जब वो आपकी आवाज को सुनता है, अपने हृदय को कठोर मत करो, तब आप कहते हो, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। तब आप जीवन में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा आप में आता है, आपका पुराना आत्मा मरने लगता है, जो आपको लोभ और घृणा और द्वेष और बैर करने को लगाता है, और नफरत और वे सारी चीजें मरती जाती हैं, और आप प्रेम, आनंद, शांति, विश्राम से भर जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी हवा चले, कोई बात नहीं, मेरा लंगर उस पर्दे के भीतर लगा है। हर एक तेज और तूफानी आंधी में से होते हुए मेरा लंगर उस पर्दे के भीतर लगा है, क्योंकि उस मसीह जो मजबूत चट्टान है, मैं खड़ा हूँ। बाकी की सारी भूमि धसती हुई रेत है। वहाँ आप हैं एडी पेरनेट, जैसा कि उसने उस प्रसिद्ध गीत को लिखा, सारी अन्य भूमि, सारे संप्रदाय, सारे संस्था, सारे मत सिद्धांत मिटते जाते हैं, मसीह, आप कहते हैं ठीक है मैं बाइबल को जानता हूँ। बाइबल को जानने से आपके पास जीवन नहीं होता है। मैं अपने धार्मिक शिक्षा को जानता हूँ, आपके धार्मिक शिक्षा को जानने से आपके पास जीवन नहीं होता है। ठीक है, मैं एक मसीही हूँ, मसीहत को दावा करने से आपके पास जीवन नहीं होता है। उसे जानने के द्वारा आपके पास जीवन होता है, उसे जानने से आपके पास जीवन होता है। तब आप उसके विश्राम में प्रवेश करते हो, आप अपने कामों से पूरा करते हैं जैसे परमेश्वर ने अपने कामों से किया। आपको परमेश्वर का पुत्र बनाया है, परमेश्वर का भागीदार। और यदि वो पवित्र आत्मा आपसे प्रीति करता है और आप वापस प्रीति करके कहते हैं हाँ प्रभु, या प्रेम पूर्वक बोलते हैं प्रेम पूर्वक, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आप कहते हैं आह मैं जवान हूँ, मैंने ओह मेरा पास्टर नहीं, मुझे बस इतना करना है। देखा, आप इसे कभी भी नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप कहते हो हाँ मेरे प्रभु, मैंने आपकी आवाज को सुना है, मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता प्रभु, ये आपका वचन है और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मुझे ले लीजिए यीशु, मैं जैसा भी हूँ बिना किसी एक तर्क के, लेकिन आपका लहू मेरे लिए बहाया गया था और वहाँ मैं प्रतिज्ञा करूँगा, मैं विश्वास करूँगा, हे परमेश्वर के मेमने, मैं आता हूँ, उसके मरते हुए सिर पर अपने हाथ को रखें, कहें प्रभु मैं एक पापी हूँ और आपने मुझे बुलाया है, जिस किसी को पिता ने मुझे दिया है वो सब मेरे पास आएंगे और मैं उसे अंत के दिनों में जिलाकर खड़ा करूंगा। हाँ प्रभु मैं आया हूँ, मैं अपने हृदय को कठोर नहीं करता हूँ जैसा कि उन्होंने क्रोध दिलाने के समय किया था, मैं सचमुच विश्वास करता हूँ। फिर वो क्या करता है, वो आपको अपना जीवन जोई अनंत जीवन को देता है। और यदि परमेश्वर हमें धरती की मिट्टी में से उठा सकता है जहाँ से हम आए हैं, क्या हम मिट्टी से आए हैं? जो कुछ भी आप देखते हैं वो मिट्टी से आया है। और यदि परमेश्वर मुझे वो बना सकता है जो मैं आज हूँ बिना किसी चुनाव के, सिर्फ इसलिए कि उसकी इच्छा मुझे बनाने की थी और मुझे कलवरी का सामना करने और अपने निर्णय को लेने का सौभाग्य देना था, और मैंने अपना निर्णय ले लिया और उस पर विश्वास किया, वो मुझे और कितना अधिक ऊपर लाएगा। यदि उसने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ बिना किसी चुनाव के, तो मैंने एक चुनाव को किया और उसे अंदर ले लिया। जब उसने खुद पर अपने हाथ को रखा और अपनी ही शपथ खाई कि वो अंतिम दिन में मुझे उठाकर खड़ा करेगा, तो मैं निश्चित रहूंगा। मेरे पास विश्राम है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं रविवार को आराधना करता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं सबत के दिन आराधना करता हूँ, उसका इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है। मैं आराधना करता हूँ क्योंकि मैंने उसकी शांति और विश्राम में प्रवेश किया है। शांति, विश्राम, प्रेम, आनंद, तूफानों को आने दो, मेरा लंगर लगा हुआ है। क्या आपको आज रात वो अनुभव मिला है मेरे मित्र, जो यहाँ इस गर्म आराधनालय में बैठे हुए हैं? आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए, नहीं, आप वचन सुनने आए हैं। सुनना मेरे मित्र, अब यदि आपको वो विश्राम नहीं मिला है तो आप इसे ठीक अभी पा सकते हैं। आपको यहाँ वेदी पर आने की आवश्यकता नहीं है, आप जहाँ हैं वहीं बैठे रहें, सच्चे बने रहें और कहें मसीह बस मेरे हृदय से बात कीजिए, मैं जानता हूँ कि यह गर्मी है, मैं बस पूरी तरह पसीने से लथपथ हूँ, मैं बहुत अधिक हूँ, लेकिन परमेश्वर वास्तव में हो सकता है मुझे दर्द से पसीना आए जो इससे भी बदतर हो, इससे पहले सुबह हो, और डॉक्टर अपना सिर हिलाकर कह सकता है यह दिल का दौरा पड़ा है, वो जा चुका है, तब क्या जब वो महान किताब खोली जाती है, तब क्या? क्या आपने वो गाना सुना? तब क्या जब वे लोग जो संदेश को अस्वीकार करते हैं उनसे कारण बताने के लिए पूछा जाएगा, तब क्या अब इसके बारे में वास्तव में गहराई से सोचें। जब हम अपना सिर झुकाते हैं इसके बारे में सोचें।
When the one that's rejecting this message tonight gonna be asked to give a reason, what then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight You're going to be asked to give a reason. What then? Heavenly Father, this is all.
स्वर्गीय पिता, अब ये सब आपके हाथ में है। यहाँ वो सच्चा सबत लोगों के सामने रखा गया है। यहाँ वो परमेश्वर का दूत है, पिछले कुछ वर्षों से लेकर जिसने संसार भर में विस्फोट किया है, निंदा करने वाले और बाकी हर एक चीजों ने इसे दोषी ठहराने की कोशिश की है, लेकिन हर समय आप खुद को परमेश्वर साबित करते हैं। वैज्ञानिक संसार, कलीसिया का संसार, क्या वे अंधे हैं प्रभु? हो सकता है कि आज रात यहाँ कोई एक हो जो अपनी दृष्टि को पाना चाहेगा, ताकि उस पर चलें और परमेश्वर की परीक्षा नहीं करें, जैसा क्रोध दिलाने के दिनों में किया था, ना ही उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करें, रविवार को अच्छा बनकर या किसी एक दिन को मानकर या किसी एक संस्था को या किसी एक कलीसिया से संबंधित होना, लेकिन बाहर आकर और हृदय का खतना करवाना और पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, और वे उसे चाहते हैं। अब विश्वास के द्वारा वे उसे अपने हृदय में स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। वे आपके साथ अनुग्रह पाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। ओह, हो सकता है उन्होंने अन्य जुबानों में बोला हो, उन्होंने हो सकता है चिल्लाया होगा, उनके पास अब भी वही पुराना स्वभाव है, उनके पास अब भी वही पुराना कपट है, वे अब भी बकबक और बातें करते हैं और उन कामों को करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। वे ऐसा नहीं चाहते प्रभु। तब क्या, जब वो महान किताब खुलती है जिसने कहा ऐसे लोग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, इसलिए चाहिए कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम सिद्ध बनो, कुछ भी कम होने पर अंदर नहीं जाएंगे। क्या वे पूरी तरह से भरोसा करते हैं आज रात क्रूस पर चढ़ाए जाने में? यदि नहीं प्रभु, होने पाए वे उस एक को अनंत बनाएं। हाँ ठीक, अभी कहें प्रभु मैं ना ही कोई भावना में आकर, लेकिन बस हृदय में कुछ तो ऐसा महसूस होता है कि कोई तो मुझसे कह रहा है, मैं इसे ठीक अभी आपके अनुग्रह के द्वारा कर सकता हूँ, और मैं अब आपको अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं संसार की सारी चीजों को अस्वीकार करता हूँ और मैं आपके विश्राम में प्रवेश करना चाहता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ, मैं इसे ठीक अभी कर रहा हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझे ठीक उस स्थान पर ला रहा है, जबकि हर एक सिर झुका हुआ है। क्या ठीक अभी किसी को ऐसा महसूस होता है? अपना हाथ ऊपर उठाएं। पवित्र आत्मा अब मुझे एक ऐसे स्थान पर ला रहा है जहां मैं अब और इधर उधर की बात नहीं करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं उन चीजों को नहीं करूंगा, मेरा वो स्वभाव चला गया है, मैं अब से लेकर शांति और आनंद और सहनशीलता में जी सकता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ठीक अभी मुझसे बात कर रहा है कि मैं इस समय से उसके अनुग्रह के द्वारा इसे कर सकता हूँ। क्या आप अपने हाथों को उठाएंगे? परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर उस युवा महिला को आशीष दे। कोई और है? मैं अब विश्वास करता हूँ। उसकी परीक्षा मत लेना जैसा कि क्रोध दिलाने के दिन किया था। यह मत सोचना क्योंकि हम रविवार को कलीसिया जाते हैं या सबत को मानते हैं। पौलुस ने कहा, तुम जो दिन या चांद या इत्यादि को मानते हो, मैं तुमसे चिंतित हूँ। आने वाली अच्छी चीजों की व्यवस्था की छाया और ना ही उसी चीज की छवि आराधना करने वालों को कभी भी सिद्ध नहीं बना सकती, लेकिन मसीह आपको सिद्ध बनाता है, परमेश्वर की दृष्टि में सिद्ध। वो आपके पापों को ले लेता है, आपसे दोष को ले लेता है, आपको अपने प्रेम और आनंद को देता है। क्या आप अब विश्राम में प्रवेश करेंगे? कोई एक और उसके हाथ को उठाकर कहे, मैंने ऐसा किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे, युवा महिला यहाँ जो मेरी बाईं ओर है। परमेश्वर उस पुरुष को आशीष दे जो मेरे दाहिनी ओर बैठा है, उसके विश्राम में प्रवेश करते हुए अब इसके बारे में सोचें। प्रार्थना करें, मैं जैसा भी हूँ प्रभु, बिना एक बहाने के मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं आपको कुछ भी अर्पण नहीं कर सकता सिवाय बस मेरे पुराने थके हुए पापी जीवन के। क्या आप मुझे ग्रहण करेंगे, साफ करेंगे, मुक्त करेंगे? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं विश्वास करूंगा। हे परमेश्वर के मेमने, मैं आया हूँ, मैं अब इस विश्वास के साथ आया हूँ कि अब मैं मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ, क्योंकि ठीक यही मेरी कुर्सी पर मैंने आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, और मैं अपने हृदय में शांति को महसूस करता हूँ। पांच लोगों ने उनके हाथ को ऊपर उठाया है। क्या कोई और है जो ऐसा महसूस करता है? अपने हाथ को उठाएगा। यदि आप एक मसीही नहीं है तो उसे बस अभी स्वीकार करें। यदि आप एक मसीह होने का दावा करते हैं और उस तरह से नहीं रहे हैं, तो आप अब भी एक पापी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या जीवन जिया है या आप खुद को कैसे बनाने की कोशिश करते हैं, आप जो करते हैं स्वीकार नहीं किया गया है। यह तो उसने किया है। आपकी खुद की धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि आपने सिर्फ इसलिए धूम्रपान छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा, खैर मेरे लिए बेहतर है धूम्रपान को छोड़ दूं क्योंकि मैं मसीहत को मानता हूं। परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। यदि आप महिलाओं के प्रति अभिलाषा को छोड़ते हैं सिर्फ इसलिए कि आप खुद से ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करता है। यह कुछ तो आप करते हैं वो काम करता है। यह अनुग्रह है जो आपको बचाता है। क्या परमेश्वर ने आपके पास आकर और आप में से संपूर्ण चीज को निकाल लिया है? यही वो अगली चीज है। आप कहते हैं मैं कलीसिया में जुड़ गया हूँ और इसलिए मुझे इन चीजों को छोड़ना था। परमेश्वर ने इसे स्वीकार नहीं किया। आप कुछ भी अर्पण नहीं कर सकते। वो केवल वही स्वीकार करता है जो मसीह देता है। वो आपको अनंत जीवन देता है और इसे आपसे लेता है। क्या आप इसे ग्रहण करेंगे?
In the haven of rest, and sleep by the landing fire. I've anchored my soul.
तो ठीक है, आप अपने सिर को ऊपर उठा सकते हैं। संदेश अब खत्म हुआ है। आइए हम अब आराधना करें। अब हर एक जन आराधना में रहे। बस अपने आप को ढीला छोड़ें, अपनी आंखों को बंद करें, उस मधुर आत्मा को महसूस करते हैं। यही आराधना है। संदेश समाप्त हुआ है। यह आराधना है। कितने लोग वास्तव में अच्छा महसूस करते हैं? अपना हाथ ऊपर उठाएं। वो मधुर नम्र आत्मा ऐसा ही है। बस आराधना करें।